आगे सबक देखिए भाई। वमन अमरा रजुलन अन युज़व्विजहु इम्रअतन फज़व्वजहु इथ्नतैनि फी अक़दतिन लम तल्ज़म्हु वाहिदतुन मिन्हुमा लिअन्नहु ला वजह इला तन्फीज़िहिमा लिल्मुखालफति वला इला तन्फीज़ि फी इहदाहुमा ग़ैरि ऐनिन लिल्जहालह वला इला तय्यीन लिअदमि अलऊलवियति फतअय्यना तफ़रीक़। भाई गुज़श्ता सबक में हमने फजूली के निकाह के बारे में पढ़ा था। भाई आपने मसला पढ़ा कि अगर कोई फजूली जो है वो किसी गुलाम या बांदी का निकाह करवाता है उनके आका की इजाजत के बगैर, तो ये निकाह मुनाकिद हो जाएगा, अलबत्ता आका की इजाजत पर मौकूफ है। वो इजाजत देगा तो ये निकाह नाफिज हो जाएगा वरना बातिल हो जाएगा। और इसी तरह अगर किसी शख्स ने किसी आजाद मर्द या आजाद औरत का निकाह करवाया उनकी इजाजत के बगैर, तो ये जो फजूली का निकाह है ये भी मुनाकिद हो जाएगा, अलबत्ता उस मर्द या औरत की इजाजत पर मौकूफ रहेगा। अगर वो इजाजत दे देंगे तो ये निकाह नाफिज हो जाएगा, और अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो ये निकाह नाफिज नहीं होगा। भाई और साहिब हिदाया ने आपको जाब्ता बतलाया था कि इंदल अहनाफ हर ऐसा अकद जो फजूली की तरफ से हुआ हो वो उस वक्त मुनाकिद होता है जब उसका कोई इजाजत देने वाला हो, यानी कोई ऐसा शख्स हो जिसकी इजाजत से वो नाफिज भी हो सके। तो अगर कोई मुजीज मौजूद है तो फिर फजूली का निकाह मुनाकिद हो जाएगा, अलबत्ता इजाजत पर मौकूफ रहेगा। तो उस निकाह के लिए कोई इजाजत देने वाला होना चाहिए। यह दरअसल एहतराज है। मसलन कोई यतीम या यतीमा का निकाह करवाता है कोई फजूली, और उस यतीम या यतीमा का कोई भी वली मौजूद नहीं है, तो फिर इस पर इश्काल होता है। अगर कोई वली ना हो तो फिर गाजी या खलीफा उसका वली होता है, तो वली तो मौजूद है। कहते हैं सूरत मसला आप दारुल हर्ब में फर्ज कर लें, जहां पर यतीम या यतीमा मुसलमान है और उसका कोई निकाह करवाना चाहता है फजूली, तो याद रखो इस निकाह का कोई मुजीज ही नहीं है, लिहाजा ये मुनाकिद ही नहीं होगा। या इसी तरह ये एहतराज है मुकातब के गुलाम से। मुकातब वो गुलाम है जिससे आका ने अकदे किताबत कर लिया कि इतनी मुद्दत के अंदर इतना माल ले आओ तो तुम आजाद हो, और गुलाम ने इसको कबूल कर लिया। तो ये जो दोनों के दरमियान आकद हुआ इसको अकदे किताबत कहते हैं। किताबत का माना यहां लिखना नहीं है, इस अकद का नाम ही क्या है, अकदे किताबत। और ये जो मुकातब होता है ये आजाद आदमी की तरह हो जाता है, आका इससे जबरदस्ती खिदमत नहीं ले सकता। हां वो अपनी मर्जी से खिदमत करना चाहे तो अलग बात है। तो ये आका की खिदमत अब इसके जिम्मे नहीं है, ये जाएगा पैसे कमाएगा और अपने आप को आजाद करवाएगा। तो ये मुकातब जो है तिजारत करने लगा और फिर कुछ पैसा जमा हुआ, इसने गुलामों की तिजारत शुरू कर दी। तो ये जो मुकातब है गुलामों की बेअशिरा तो कर सकता है, उनका निकाह नहीं करवा सकता। वजह यह कि गुलाम के अंदर ये जो निकाह है ये ताजिरों के यहां ऐब शुमार होता है, इससे गुलाम की कीमत कम हो जाती है। तो लिहाजा मुकातब गुलामों का निकाह नहीं करवा सकता, क्योंकि उसको तिजारत की इजाजत शरीयत ने दी है, उस माल के अंदर ऐब पैदा करने की इजाजत नहीं है, ये तो नुकसान है भाई। तो मालूम हुआ मुकातब अपने गुलाम का निकाह नहीं करवा सकता। अब इस मुकातब के गुलाम का कोई फजूली निकाह करवाना चाहता है तो याद रखो इस सूरत में यह निकाह मुनाकिद नहीं होगा, क्योंकि इस निकाह का कोई मुजीज ही नहीं है। खुद मुकातब भी इजाजत नहीं दे सकता इस निकाह की, और मुकातब का जो आका है जिसके साथ मुकातब ने अकदे किताबत किया था वो भी इस अकद की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि ये उसका तो गुलाम है ही नहीं, ये तो मुकातब का गुलाम है भाई। लिहाजा ये जो फजूली जिसने मुकातब के गुलाम का निकाह करवाया ये निकाह बातिल है, ये मौकूफ होकर भी मुनाकिद नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई मुजीज ही नहीं है भाई। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फजूली के तमाम तसर्रुफात बातिल होते हैं। फजूली कोई अकद वगैरह कर ले उसका कोई एतबार नहीं, वरना तो दुनिया का निजाम बिगड़ जाएगा भाई। जिस शख्स का दिल चाहेगा किसी का निकाह करवा रहा है या किसी की कोई चीज बेच रहा है, कोई चीज खरीद रहा है वगैरह, तो वो दलील देते हैं कि ये फजूली के तसर्रुफात बातिल हैं, इसलिए क्योंकि जो भी अकद किया जाता है جو بھی عقد کیا جاتا ہے وہ دراصل اس عقد کے حکم کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. دیکھو نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ مرد اور عورت میاں بیوی بی بن جائیں اور ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں. اسی طرح بیع اس لیے کی جاتی ہے تاکہ مشتری مبیعے کا مالک بن جائے. تو یہ ان عقدوں کے احکام ہیں, اور فضولی جب ان احکام کو ہی ثابت نہیں کر سکتا تو عقد کے کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں, یہ عقد تو لغو ہوا, بیکار ہوا. جبکہ ہمارے نزدیک فضولی جو ہے وہ ایک آزاد عاقل بالغ آدمی ہے, وہ اہل تصرف ہے فی ذاتی ہی, اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو تمام تصرفات کا حق دیا ہے شریعت نے. وہ اپنا نکاح بھی کر سکتا ہے, وہ بیع و شراء وغیرہ اور عقد بھی کر سکتا ہے. تو فضولی ایک آزاد عاقل بالغ آدمی ہے, اس میں عقد کرنے کی صلاحیت موجود ہے, وہ اہل تصرف ہے, اور اس نے ایک محل تصرف کے اندر یہ تصرف کیا ہے, یعنی ایک ایسی عورت سے نکاح کروایا ہے جس کے ساتھ اس آدمی کا نکاح جائز ہے. اس آزاد عورت یا آزاد مرد کا جہاں نکاح کروایا وہاں ان کا نکاح جائز تھا, کوئی محرم وغیرہ نہیں تھے اس کے. تو یہ عقد کس نے کروایا ہے؟ ایک اہل تصرف نے, جس میں صلاحیت ہے تصرف کی. اور کس سے کروایا؟ جہاں عقد ہو سکتا تھا. اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے اگر اس کو منعقد قرار دے دیا جائے, بلکہ یہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا ہے, اور لوگ ایک دوسرے کے کاموں میں مدد کرتے ہیں. تو کسی کا ایک جگہ نکاح کروا رہا ہے یا کسی کی کوئی چیز بیچ رہا ہے تو دراصل یہ اس کی مدد کر رہا ہے, اور اس میں اس صاحب تصرف وہ جو اصل مالک وغیرہ ہے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. تو وہ اس میں اگر کوئی فائدہ دیکھے گا تو اجازت دے دے گا, نافذ کر دے گا اس کو, اور اگر اس کو فائدہ نظر نہ آیا یا نقصان نظر آیا تو وہ اس کو باطل کر دے گا. تو معاملہ سارا اس کے اختیار میں ہے, لہذا اس فضولی کے عقد کو منعقد قرار دینے میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور باقی امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب بھی دیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ حکم پایا ہی نہیں گیا, بلکہ یوں کہیں گے ہم کہ حکم مؤخر ہو گیا, اور کبھی کبھار حکم عقد سے مؤخر ہو جاتا ہے. جیسے وہ بیع جو خیار شرط کے ساتھ کی جائے, میں نے بتایا جب بیع کسی کے ساتھ آپ کریں گے تو وہ ایجاب اور قبول کرتے ہی مشتری مبیعے کا مالک بھی بن گیا, بیع نافذ ہو گئی, اور نیز بیع لازم ہو گئی. بیع لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے اگر صرف کوئی ایک چاہتا ہے اس بیع کو فسخ کر دے, نہیں اب اختیار نہیں ہے, صرف بائے فسخ کرنا چاہتا ہے یا صرف مشتری فسخ کرنا چاہتا ہے, نہیں کسی ایک کو بھی بیع کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں. ہاں اگر دونوں مل کر فسخ کرتے ہیں پھر تو بھئی انہی کے درمیان عقد ہوا تھا, ان کی مرضی ہے فسخ کر دیں, لیکن بہرحال کسی ایک اکیلے کو اختیار نہیں ہے اس بیع کو فسخ کرنے کا, کیونکہ یہ بیع لازم ہو چکی. لیکن خیار شرط کے ساتھ جو بیع کی جائے وہ لازم نہیں ہوتی, وہ دو تین دن کا جس نے اختیار رکھا ہے وہ اس کو فسخ کر سکتا ہے. تو دیکھو بیع پائی گئی لیکن بیع کا حکم یعنی اس کا لازم ہونا نہیں پایا گیا. تو کبھی کبھار عقد پایا جاتا ہے اور اس کا حکام مؤخر ہو جاتا ہے. یا اسی طرح میں نے بتایا امام صاحب کے نزدیک خیار شرط چاہے مشتری رکھے چاہے بائع رکھے, دونوں صورتوں میں مشتری مالک نہیں بنتا. خیار شرط مثلا بائع نے رکھا کہ میں بے فسق کر سکتا ہوں, تین دن میں مجھے اختیار ہے, تو بھی مشتری مالک نہیں. اور خیار فسق مشتری نے رکھا کہ مجھے اختیار ہے میں بیع کو تین دن میں فسق کر سکتا ہوں, ایجاب اور قبول کر لیا, لیکن امام صاحب فرماتے ہیں مشتری اس مبیعے کا مالک نہیں. حالانکہ بیع کا حکم ہی کیا ہے کہ مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے. تو دیکھو عقد پایا جا رہا ہے لیکن اس کا حکم مؤخر ہو گیا ہے, جب وہ خیار شرط والا اجازت دے دے گا تو پھر مشتری مالک بن جائے گا. تو دیکھا بیع کا حکم یعنی مشتری کا مالک بننا وہ مؤخر ہو گیا بیع سے, بیع پائی جا رہی ہے اور دو تین دن تک مشتری مالک ہی نہیں بن رہا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں, یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ فضولی نے جو عقد کیا ہے یوں نہ کہا جائے کہ اس کا حکم ہی نہیں پایا جا رہا اس عقد کا, بلکہ ہم یوں کہیں گے حکم مؤخر ہو گیا ہے. جب اصل مالک اجازت دے گا تو پھر وہ عقد منعقد ہو جائے گا. और फिर मैंने यहां यह भी बयान किया था कि आम उर्दू शारहीन यहां जिक्र फरमाते हैं कि जो मतन में आया व तजवीजुल आबदी वल आमती कि गुलाम या बांदी का निकाह करवाना, इसमें वो दो सूरतें जिक्र करते हैं कि गुलाम या बांदी का निकाह कोई फजूली करवा दे या गुलाम या बांदी अपना निकाह खुद कर लें, वो भी इसके अंदर दाखिल है। लेकिन मैंने बताया नहीं, गुलाम या बांदी खुद अपना निकाह करें वो यहां दाखिल नहीं हो सकता। वजह यह कि आगे जो दलील दे रहे हैं हमारी साहिब हिदाया कि रुकने तसरुफ सादिर हुआ है अहले तसरुफ से, किससे? अहले तसरुफ से रुकने तसरुफ सादिर हुआ है, और हालांकि गुलाम या बांदी उनमें तो अकद की सलाहियत और अहलियत ही नहीं है, तो वो तो अहले तसरुफ ही नहीं है। दलील क्या कि निकाह किसने करवाया है? अहले तसरुफ ने, और गुलाम या बांदी तो अहले तसरुफ ही नहीं है, लिहाजा वो इस दलील के तहत दाखिल ही नहीं होते। और नीज मैंने बताया ऊपर मतन में तजवीज का लफ्ज आया है, तजवीज जव्वज युज़व्विज, तजवीज का माना होता है किसी दूसरे का निकाह करना, अपना निकाह करना हो उसके लिए तजव्वुज का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अगर गुलाम या बांदी का अपना निकाह मुराद होता कि वो खुद निकाह करें तो तजव्वुज का लफ्ज होना चाहिए था। बात समझ में आ गई? तो गुलाम या बांदी अपना निकाह करवाएं वो इस इबारत के तहत दाखिल नहीं। हां अलबत्ता याद रखना हुक्म उसका भी यही है, वो इस इबारत के तहत तो दाखिल नहीं लेकिन हुक्म उसका भी यही है, गुलाम या बांदी अपना निकाह करवाएंगे तो वो आका की इजाजत पर मौकूफ रहेगा। जैसे फजूली किसी का निकाह करवाता है हालांकि फजूली के पास इख्तियार नहीं होता वो निकाह करवाने का, इसी तरह यह गुलाम या बांदी जब अपना निकाह करेंगे तो इनके पास इख्तियार नहीं है अपना निकाह करवाने का, तो ये भी क्या हुए? फजूली ही हो गए। क्या हो गए? फजूली हो गए। लिहाजा ये खुद अपना निकाह करेंगे तो वो भी आका की इजाजत पर मौकूफ रहेगा। तो गुलाम या बांदी अपना निकाह खुद करते हैं वो इस मसले के तहत दाखिल नहीं, अलबत्ता हुक्म उसका भी यही है। बात समझ में आ गई? फिर इसी फजूली के निकाह में साहिब हिदाया ने मजीद मसाइल जिक्र फरमाए कि अगर कोई फजूली निकाह करवाता है तो वहां दो सूरतें बनती हैं, या तो वो फजूली दोनों तरफ का मुतवल्ली होगा या दोनों तरफ का मुतवल्ली नहीं होगा। फजूली दोनों तरफ का मुतवल्ली है उसमें दो सूरतें हैं, या तो दोनों तरफ से फजूली होगा या एक तरफ से असील है और एक तरफ से फजूली है। फजूली एक शख्स जो फजूली बन रहा है वो निकाह की दोनों तरफ का मुतवल्ली हो मसलन, यानी दोनों तरफ से फजूली है, एक मर्द या एक औरत का निकाह करवा रहा है और ना वो मर्द की तरफ से वकील है और ना औरत की तरफ से वकील है, तो फजूली निकाह का मुतवल्ली हुआ और दोनों तरफ से फजूली है। दूसरी सूरत यह है कि फजूली ने निकाह करवाया, अपना निकाह करवाया किसी औरत से और मसलन उस औरत ने इसको वकील नहीं बनाया, तो यह फजूली क्या हुआ? ये उस औरत की तरफ से तो फजूली है लेकिन अपनी जानिब से असील है। तो देखो एक ही शख्स निकाह की दोनों जानिब का मुतवल्ली है और एक तरफ से असील है और एक तरफ से फजूली है। तो जब फजूली निकाह करवाए या तो वो दोनों तरफ से निकाह का मुतवल्ली होगा या दोनों तरफ का मुतवल्ली नहीं होगा। दोनों तरफ का मुतवल्ली हो इसमें दो सूरतें आ गई, क्या दोनों तरफ से ही फजूली हो या एक तरफ से फजूली है और एक तरफ से असील है, तवज्जो है। दूसरी सूरत यह है कि फजूली निकाह करवा रहा है लेकिन वो दोनों जानिब का मुतवल्ली नहीं है, एक तरफ असील है और दूसरा फजूली है। एक शख्स ने कहा मैंने फलानी औरत से निकाह किया और एक आदमी उसी मजलिस में कहता है मैंने उस औरत की तरफ से कबूल किया, तो अब देखो फजूली ने निकाह करवाया लेकिन वो निकाह की दोनों तरफ का मुतवल्ली नहीं बन रहा, या दोनों तरफ ही फजूली है। जैद की तरफ से एक आदमी निकाह करवा रहा है हालांकि वो जैद का वकील नहीं, और उधर से दूसरी औरत की तरफ से एक शख्स निकाह करवा रहा है हालांकि उस औरत का वकील नहीं, तो ये दोनों फजूली हैं। अब ये जो निकाह करवा रहे हैं इसमें देखो फजूली तो है लेकिन दोनों जानिब के मुतवल्ली नहीं। तो ज़ाब्ता ये जिक्र हुआ था कि तरफैन के नजदीक जब एक ही शख्स दोनों जानिब से निकाह का मुतवल्ली बन रहा हो तो उसको किसी भी तरफ से फजूली नहीं होना चाहिए। वो दोनों तरफ से फजूली हुआ तो भी निकाह मुनाकिद नहीं होगा, अगर अगर किसी एक तरफ से फजूली हुआ तो भी निकाह मुनाकिद नहीं होगा। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, फजूली अगर निकाह की दोनों जानिब का मुतवल्ली हो तो भी निकाह मुनाकिद हो जाएगा। अब इसी पर एक मसले को जहन में रखो और उस पर सारी इनके दलाइल मुंतबिक करते जाओ। मसलन एक सूरत यह है, एक शख्स एक मजलिस में बैठा हुआ है और वो अपना निकाह करवाता है किसी औरत से, तो अपने लिए हुआ असील और उस औरत के लिए क्या हुआ फजूली। अब इन गवाहों के सामने वो कहता है कि तुम लोग गवाह रहो, मैंने उस औरत से अपना निकाह कर दिया। तो दोनों जानिब से मुतवल्ली बन रहा है, अपने लिए है असील और औरत के लिए क्या है फजूली। तो तरफेन के नजदीक यह निकाह बातिल है, लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं यह निकाह मुनाकिद हो जाएगा और बाद में वह औरत इजाजत दे देगी तो निकाह नाफिज भी हो जाएगा, यह मियां बीवी बन जाएंगे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इस फजूली के निकाह को कियास करते हैं वकील पर। जैसे वकील जब दोनों तरफ से निकाह का मुतवल्ली हो और वो यही जुमला कहे लोग गवाहों के सामने, लड़के वालों ने भी जैद को वकील बनाया, लड़की वालों ने भी जैद ही को वकील बनाया, अब जैद जो है दोनों तरफ से निकाह का वकील है, जैद निकाह की दोनों तरफ का मुतवल्ली है, ये गवाहों के सामने कह देता है मैंने जैद का जैनब से निकाह कर दिया, तो सिर्फ उसका यह कलाम जो है ये इसी से निकाह मुनाकिद हो जाएगा, यहां कोई अलहदा कबूल करने की जरूरत नहीं है। तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं जैसे वकील जब दोनों जानिब का मुतवल्ली होता है तो सिर्फ उसके एक ही कलाम से वो निकाह मुनक़िद हो जाता है, तो फजूली जब दोनों तरफ से फजूली है या एक तरफ से फजूली है तो उसका निकाह भी इसी तरह मुनक़िद हो जाएगा, अलबत्ता मौकूफ रहेगा। वकील का निकाह नाफिज हो गया था और फजूली का निकाह मौकूफ होना चाहिए। और नीज वो इसको कियास करते हैं खुला और तलाक आला माल और इसी तरह एताक आला माल पर, कहते हैं जैसे उसके अंदर एक ही शख्स के बोलने पर वो आकद ताम हो जाता है। मैंने बताया खुला इसे कहते हैं कि जिसमें बीवी कुछ माल देकर खावन से अपने आप को छुड़वा लेती है, आजाद करवा लेती है, और इसमें तलाक का लफ्ज नहीं बोला जाता, खुला का लफ्ज बोलते हैं। मसलन औरत कहती है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी, तुम मुझसे खुला कर लो, खावन कहते हैं मुझे कबूल है, जैसे ही कबूल है कहा साथ ही दोनों में जुदाई आ गई और वो पैसे अब औरत पर लाजिम हो गए, वो उसको अदा करने पड़ेंगे, तो इसको कहते हैं खुला। और खुला मैंने बताया इसमें तलाक का लफ्ज नहीं होता, हां ये हुक्म में तलाक ही के है क्योंकि जुदाई किसकी तरफ से आ रही है, मर्द की तरफ से, वो कबूल कर रहा है इसको और मर्द तो तलाक देने का अहल है, लिहाजा ये जुदाई ये तलाक बाइन के हुक्म में है। और जबकि दूसरा है तलाक आला इवज, तलाक आला इवज ये भी बिल्कुल खुला की तरह है लेकिन इसमें सिर्फ तलाक का लफ्ज बाकायदा बोला जाता है। मसलन औरत ने यह नहीं कहा मुझसे 10 लाख रुपए लेकर मुझसे खुला कर लो, बल्कि औरत कहती है 10 लाख रुपए लेकर मुझे तलाक दे दो, तो इसको खुला नहीं कहेंगे, है अगरचे वही चीज लेकिन बहरहाल लफ्जों का फर्क आ गया, इसको कहेंगे तलाक आला माल कि माल की शर्त पर तलाक दे रहा है। और इसी तरह एक है एताक आला माल, एक तो है सूरत आका वैसे ही अपने गुलाम को आजाद कर दे, उसमें तो सिर्फ आका की मर्जी चलेगी, उसमें गुलाम के कबूल करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आका एताक आला माल करता है कि मैं अपने गुलाम को आजाद करता हूं अगर वो मुझे 10 लाख रुपए अदा कर दे, तो ये अब वो आका गुलाम से अकद कर रहा है, तो इसमें गुलाम का कबूल करना जरूरी है। तो गुलाम को जब भी ये इत्तिला मिली उसने फौरन कहा मुझे कबूल है, याद रखो फौरन वो आजाद हो गया, फौरन क्या हुआ आजाद हो गया, हां अब वो माल उसके जिम्मे लाजिम हो गया भाई। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इस आदमी के कौल को कियास करते हैं खुला तलाक आला माल और एताक आला माल पर। जैसे खुला में अगर खावन देखो किसी एक मजलिस में कहता है मैं अपनी बीवी से 10 लाख पर खुला करता हूं, तो देखो आप ये औरत इस मजलिस में नहीं है, सिर्फ खामंद ने कलाम किया है और औरत बाद में किसी और मजलिस में उसको इत्तिला मिली कि खामंद ने यह कहा है, तो वो कहती है मुझे मंजूर है, याद रखो जैसे ही उसने इजाजत दी साथ ही खुला हो गया, अब उस औरत के जिम्मे माल लाजिम। या खावंद कहता है किसी अलग मजलिस में जहां बीवी नहीं है कि मैं अपनी बीवी को 10 लाख के इवज तलाक देता हूं, सिर्फ खामंद ने कहा, अब हालांकि तलाक आला इवज ये खावंद और बीवी के दरमियान एक आकद और एक मुआहिदा हो रहा है, बगैर मुआहदे के तो औरत पर माल नहीं आएगा। तो खावन ने एक मजलिस में कहा और बीबी को दूसरी मजलिस में पता चला और उसने कहा मुझे मंजूर है, तो साथ ही तलाक हो गई, अलबत्ता उसको अब वो माल देना पड़ेगा। या इसी तरह आका ने एक मजलिस में कहा मैंने अपने गुलाम को आजाद किया 10 लाख रुपए के अइवज में, गुलाम को बाद में पता चला और उसने इजाजत दे दी, तो देखो वो आजाद हो जाएगा और उसके जिम्मे माल आ जाएगा। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं जैसे यहां खुला और तलाक आला माल और इताक आला माल, यहां एक ही शख्स के बोलने से वो अकद ताम हो गया और दूसरी मजलिस में अगर औरत या गुलाम इजाजत दे दी तब भी वो नाफिज हो जाता है। तो यहां पर भी ये जो जिस शख्स ने क्या कहा था कि तुम लोग गवाह रहो मैंने फुलानी औरत से क्या कर दिया, अपना निकाह कर दिया, तो इसको भी मुनाकिद होना चाहिए और वो औरत बाद में भी इजाजत दे दे तो इसको नाफिज हो जाना चाहिए। जबकि तरफैन फरमाते हैं कि ये जो इस शख्स ने कलाम किया है ये आकद का एक जुज है और आकद ईजाब और कबूल दो जुजों पर मुश्तमिल होता है और ये जो आदमी ने कलाम किया ये सिर्फ ईजाब है। क्या है? ईजाब। और इसके लिए कबूल जरूर चाहिए और कबूल उसी मजलिस में चाहिए। तवज्जो है, कबूल उसी मजलिस में चाहिए और उस मजलिस में तो कोई कबूल करने वाला नहीं था, लिहाजा ये ईजाब लग्व चला गया और बाद में वो औरत इजाजत दे भी तो अब निकाह नहीं हो सकता क्योंकि जिस मजलिस में ईजाब हो कबूल उसी मजलिस में चाहिए, बाद में नहीं हो सकता। तवज्जो है। वो फरमाते हैं, तरफैन फरमाते हैं कि देखो अगर वो औरत इस मजलिस में मौजूद होती और फिर यह आदमी यही जुमला कहता कि तुम लोग गवाह हो जाओ मैंने इस औरत से क्या कर दिया, अपना निकाह कर दिया, तो सिर्फ यह कहने से निकाह नहीं होना था, उस औरत जो मजलिस में मौजूद है उसका कबूल करना भी जरूरी था। मालूम हुआ वो औरत मौजूद होती तो आदमी का कलाम सिर्फ ईजाब था, पूरा आकद नहीं, उसके लिए कबूल भी चाहिए था। तो जब औरत की मौजूदगी में यह सिर्फ ईजाब है तो औरत की गैर मौजूदगी के अंदर भी यह सिर्फ ईजाब ही है, लिहाजा इसके लिए कबूल जरूर चाहिए और कबूल तो मजलिस में था नहीं, लिहाजा लग्व चला गया, बाद में इजाजत दे भी तो मुनाकिद ही नहीं होगा। बात समझ में आ गई? याद रखो जिस मजलिस में ईजाब हो कबूल उसी मजलिस में होना चाहिए। मसलन आप एक आदमी को अपनी किताब फरोख्त करते हैं या गाड़ी फरोख्त करते हैं कि यह गाड़ी भाई मैंने आपको 20 लाख रुपए में फरोख्त कर दी, तो उसी मजलिस के अंदर उसके लिए कबूल करना जरूरी है, उसी मजलिस में उसके लिए कबूल करना जरूरी है। अगर उस मजलिस में वो कबूल नहीं करता तो आपका ईजाब बातिल चला गया। अगर आपका ईजाब बातिल ना माना जाए फिर तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो 20 दिन के बाद आकर कहेगा मुझे कबूल है, अब तो गाड़ी आपके, अब गाड़ी आप नहीं बेचना चाहते लेकिन आपने ईजाब किया हुआ था, अब आपकी गाड़ी आपके हाथ से निकल जाएगी। फिर तो इंसान क्या है, जब भी ईजाब करेगा वो सारी जिंदगी के लिए रहेगा, ये तो इंसान मुसीबत में पड़ जाएगा। तो लिहाजा फुकहा क्या फरमाते हैं, ईजाब और कबूल जरूरी है, एक ही मजलिस में होने चाहिए। अगर उसी मजलिस में आपने कबूल न किया तो ईजाब बातिल हो जाएगा, बाद में इसको कबूल नहीं किया जा सकता। तो तरफैन फरमाते हैं अगर वो औरत इस मजलिस में मौजूद होती तो इस आदमी का कलाम सिर्फ एक जुज बनना था अकद का, तो औरत की गैर मौजूदगी में भी ये कलाम अकद का एक ही जुज बनेगा और एक ही जुज से तो अकद मुनाकिद नहीं होता, उसके लिए तो कबूल भी जरूर चाहिए। जबकि इसके मुकाबले में अगर वो निकाह दो फजूलियों के दरमियान हो फिर तो वह अकद ताम है, क्योंकि दो फजूली हैं, एक की तरफ से इजाब आया दूसरे की तरफ से कबूल आया, तो वह अकद क्या होगा, ताम हो जाएगा, वो अब उनकी इजाजत पर मौकूफ रहेगा। वो जिन जिनका निकाह करवाया है वो अगर इजाजत देंगे तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। तो फजूली जब दोनों तरफ का मुतवल्ली हो तो उसका कलाम अकद का एक जुज है, अकद का एक जुज है, और जब दो अलग अलग फजूली हैं फिर तो ईजाब भी पाया गया कबूल भी पाया गया, लिहाजा अकद मुनाकिद हो जाएगा। इसी तरह खुला है और तलाक आला माल है और इताक आला माल, याद रखो ये भी अकद ताम है। क्या है? अकद ताम, क्योंकि दरअसल ये तालीक है भाई, तालीक है, और जब ये तालीक है, तालीक तो एक ही आदमी के कौल से तालीक हो जाती है, उसमें दूसरे के कबूल करने की कोई जरूरत नहीं। मसलन खामन ने अपनी बीवी से कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो अब देखो सिर्फ खामंद के कहने से यह तालीक हो गई, अब इसमें औरत के कबूल की कोई जरूरत नहीं है, औरत जब भी उस घर में जाएगी उसको तलाक हो जाएगी, तो तालीक एक आदमी पर पूरी हो जाती है। तो तरफैन फरमाते हैं कि वह जो खुला था और वह जो तलाक आला माल और एहताक आला माल थे वह तालीक थे, वो क्या थे, यानी वो आकदे ताम थे, एक ही आदमी के कौल से वो बात पूरी हो गई थी। गोया खामन ने खुला में गोया खामन खामन ने क्या कहा था, मैं अपनी बीवी से 10 लाख पर खुला करता हूं, तवज्जो है, मैं अपनी बीवी से 10 लाख पर खुला करता हूं। देखो यहां शर्त और जजा नहीं, लेकिन गौर करें तो आप यहां दरअसल हकीकत में तालीक आ रही है। गोया खावन के कहने का मतलब यह है अगर मेरी बीवी मुझे 10 लाख देने पर राजी होती है तो मैं खुला करता हूं, अगर वो राजी होती है तो मैं खुला करता हूं। देखो तालीक आ गई, अब बाद में भी वो कबूल करेगी तो शर्त पूरी हो गई तो खुला भी हो जाएगा। तो ये खुला और तलाक आला माल और इताक आला माल ये सब दरअसल तालीक हैं, और तालीक एक ही आदमी पर पूरी हो जाती है। तो आप इस फजूली के निकाह को इस खुला वगैरह पर कयास नहीं कर सकते, क्योंकि फजूली का निकाह वो आकद ताम नहीं था, वो आकद का सिर्फ एक जुज था ईजाब, जबकि तालीक के अंदर तो दोनों जुज आ गए भाई आकद के। तो ये एक ही आदमी पर पूरी हो गई और नीज ये लाजिम भी हो गई, इससे अब रुजू भी नहीं हो सकता। तालीक क्या है, तालीक लाजिम हो जाती है, उससे रुजू नहीं हो सकता, ईजाब से रुजू हो सकता है। आप एक आदमी को एक गाड़ी बेचते हैं मजलिस के अंदर मसलन, आप उसे कहते हैं मैंने ये गाड़ी आपको 10 लाख रुपए में बेच दी, अब उसको कबूल करने का इख्तियार है, आपने सिर्फ ईजाब किया है। तो याद रखो कबूल से पहले पहले ईजाब से रुजू भी किया जा सकता है। आप कह सकते हैं उसने अभी कबूल नहीं किया था, आप कहते हैं नहीं नहीं भाई मैं नहीं बेचना चाहता, बस भाई आपका ईजाब बातिल हो गया, अब वो कबूल करे भी तो बै मुनाकिद नहीं होगी। तो ईजाब के अंदर कबूल से पहले रुजू हो सकता है, लेकिन तालीक के अंदर रुजू नहीं हो सकता। चुनांचे तरफैन फरमाते हैं कि ये जो खुला तलाक आला माल और इताक आला माल को आपने जिक्र किया ये तालीक हैं, इसीलिए ये खावंद या आका इनसे रुजू नहीं कर सकता। अब मामला उसके हाथ से निकल गया, खावंद ने क्या कहा था, मैं अपनी बीवी से 10 लाख पर खुला करता हूं, फिर कहते हैं नहीं नहीं मैं खुला नहीं करता, नहीं भाई मामला आपके हाथ से निकल चुका है, आप तालीक हो चुकी है, बीवी जब कबूल करेगी खुला हो जाएगा, जुदाई आ जाएगी। तो तरफैन फरमाते हैं देखो खावंद का इस खुला तलाक आला माल और एताक आला माल से रुजू नहीं हो सकता, यही बतला रहा है कि यह तालीक है, ये तालीक है। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदाया ने इस तालीक को तसर्रुफ यमीन के नाम से जिक्र किया, किस नाम से, मैंने बताया एक है यमीन, यमीन का माना है कसम, यमीन का माना है कसम, तालीक अलग चीज है, यमीन अलग चीज है, लेकिन फिका के अंदर तालीक को भी यमीन कहते हैं, क्योंकि जैसे यमीन किसी काम पर उभारने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए कसम खाई जाती है, एक आदमी कहता है अल्लाह ये काम मैं जरूर करूंगा, वो कसम क्यों खा रहा है, अपने नफ्स को उभारने के लिए कि अब ये काम करना पड़ेगा मैंने कसम खा ली है। और कभी कहता है अल्लाह मैं ये काम नहीं करूंगा, ये अपने नफ्स को रोक रहा है कि तुम्हें मैंने कसम खा ली है अब ये काम नहीं करना। तो यमीन किसी काम से रोकने या किसी काम पर उभारने के लिए होती है, इसी तरह तालीक भी किसी काम पर उभारने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए होती है। खावन ने अगर अपनी बीवी से कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, मालूम हो वो औरत को रोक रहा है, उभार रहा है कि अगर गई तो फिर क्या हो जाएगी, तलाक, लिहाजा तुम्हें उस घर में नहीं जाना चाहिए, तो ये रोक रहा है। और कभी कभार तालीक होगी किसी काम पर उभारने के लिए होगी, मसलन खावंद अपनी बीवी से कहता है अगर तू शाम तक उस घर में न गई तो तुझे तलाक है, वह उभार रहा है कि तुम्हें शाम से पहले पहले उस घर में जाना पड़ेगा। भाई बात समझ में आ गई। तो हासिल कलाम ये कि तालीक को भी यमीन कहते हैं, इसलिए क्योंकि जिस तरह यमीन किसी काम पर उभारने या रोकने के लिए होती है, इसी तरह तालीक भी किसी काम पर उभारने या रोकने के लिए होती है। यहां एक और कीमती बात याद रखना, फिका के अंदर तालीक को भी यमीन कहते हैं, लेकिन उस तालीक को जिसमें किसी काम पर उभारा जा रहा है या रोका जा रहा है, हर तालीक को यमीन नहीं कहते, हर तालीक को यमीन नहीं। मैंने अभी मिसाल जिक्र कर दी, खावंद कहता है अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक मालूम हुआ, रोकना चाह रहा है, इसको यमीन कहेंगे, रोकने के लिए यह तालीक है। या खावंद कहता है बीवी को अगर तू उस घर में शाम तक न गई तो तुझे तलाक मालूम हुआ, अब उसको उभार रहा है कि उसको वहां जाना पड़ेगा। तो ये जो तालीक है जिसमें किसी काम पर उभारा जा रहा है या किसी काम से रोका जा रहा है, इस तालीक को यमीन कहेंगे। हर तालीक को यमीन नहीं कहेंगे। अगर एक शख्स तालीक करता है लेकिन ना वहां उभारना है ना रोकना है, उसको यमीन नहीं कहेंगे। मसलन एक शख्स कहता है कि कल जब सूरज तुलू होगा तो उस वक्त मेरी बीवी को तलाक है, कल जब सूरज तुलू होगा तो उस वक्त मेरी बीवी को तलाक है। तो देखो कल सुबह सूरज तुलू होगा तो उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी। अब यहां ना उभारना है किसी काम पर और ना किसी काम से रोकना है, तो तालीक तो है लेकिन इसको यमीन नहीं कहेंगे। तो यमीन किस तालीक को कहते हैं? जिसमें किसी काम पर उभारना या रोकना हो। भाई ये कीमती बात याद रखना भाई। अब आइए आज के सबक पर। वमन अमरा रजुलन अन युज़व्विजहुम रअतन फज़व्वजहु स्नतैन फी अक़दतिन लम तलज़म्हु वाहिदतुम मिन्हुमा। याद रखो यहां आपको यह बतलाएंगे कि अगर किसी शख्स को आप किसी मामले में अपना वकील बनाते हैं तो वकील अगर आपके कहे हुए के मुताबिक अकद करेगा तो वो अकद आप पर लाजिम हो जाएगा। आपने एक शख्स को वकील बनाया कि जाओ जाकर मेरे लिए गाड़ी खरीद कर ले आओ, तो वो शख्स गया और उसने आपके लिए गाड़ी खरीदी। याद रखो अब ये गाड़ी आप पर लाजिम हो गई, अब आप इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर वकील ने आपकी मुखालफत कर दी तो फिर इस सूरत में वकील का अकद मुअक्किल पर लाजिम नहीं, बल्कि इस सूरत में फिर वकील जो है वो फजूली के दर्जे में हो गया। मसलन आपने उसको भेजा था कि जाओ मेरे लिए गाड़ी खरीद कर ले आओ और वो आपके लिए मोटरसाइकिल खरीद कर ले आया, तो ये तो वकील ने आपकी मुखालफत कर दी भाई। आपने तो उसको मोटरसाइकिल का नहीं कहा था, मालूम हुआ मोटरसाइकिल के आकद के अंदर वो एक अब फजूली है भाई, और फजूली का आकद वो साहिब इजाजत की इजाजत पर मौकूफ होता है। अगर वो इजाजत देगा तो वो आकद उसकी तरफ से हो जाएगा, वरना उसकी तरफ से ये आकद नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो अब सूरत मसला ये है कि एक शख्स ने किसी दूसरे को वकील बनाया कि मेरा किसी जगह किसी औरत से निकाह करवा दो। अब वकील ने उसका दो जगह निकाह करवा दिया, तो यहां दो सूरतें बनती हैं। एक सूरत यह कि पहले एक औरत के साथ उसका निकाह करवाया और फिर दूसरी औरत के साथ निकाह करवाया, और दूसरी सूरत यह है कि दोनों औरतों से एक ही अकद में निकाह करवा दिया। तो दोनों के हुक्म अलग अलग है। याद रखो पहली सूरत ले लें जब वकील ने दो अलग अलग निकाह करवाए। आपने किसी वकील को भेजा कि जाओ मेरा किसी औरत से निकाह करवा दो, और उसने जाकर पहले एक जगह आपका निकाह करवाया और फिर दूसरी जगह निकाह करवाया। तो याद रखो इस सूरत में पहला निकाह तो मुवक्किल पर लाजिम हो जाएगा, क्योंकि उसने भी एक निकाह का कहा था और वकील ने भी एक निकाह करवा दिया। लेकिन अब वकील की जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब वो जब दूसरी जगह निकाह करवाता है तो अब वो वकील ना रहा, बल्कि अब वो यहां पर फजूली है, वो एक जायद निकाह करवा रहा है। अब दूसरा निकाह जो है वो उस मुअक्किल की इजाजत पर मौकूफ है। अगर उसने इजाजत दे दी तो ये दूसरा निकाह भी नाफिज हो जाएगा, वरना अगर उसने रद्द कर दिया तो ये निकाह बातिल हो जाएगा। ये तो थी एक सूरत के दोनों निकाह उसने अलग अलग आकद के साथ करवाए। और अगर वकील ने दो निकाह एक ही आकद में करवाए, ये सूरत जो है किताब के अंदर जिक्र है कि मसलन इस जैद का मैं फुलानी और फुलानी औरत से निकाह करता हूं, एक ही इजाब किया, और दूसरी तरफ से वो लड़की वाले दोनों ने क्या कर लिया, कबूल कर लिया, तो एक ही आकद में दो निकाह करवा दिए। तो अगर वकील ने दोनों निकाह एक ही आकद के अंदर करवाए तो फिर इस सूरत में याद रखो फुकाहा फरमाते हैं कि वकील ने मुअक्किल की मुखालफत कर दी। मुवक्किल ने तो एक निकाह का कहा था और इसने एक ही अकद में दो निकाह करवा दिए, तो अब इन दोनों में से एक भी मुवक्किल पर लाजिम नहीं। जैसे फजूली अकद करवाए तो उसका अकद उस साहिब इजाजत पर लाजिम नहीं होता, तो ये दोनों निकाह भी इस मुवक्किल पर लाजिम नहीं है भाई। ये चाहे तो दोनों को ही रद्द कर दे, ये चाहे तो दोनों की इजाजत दे दे, और ये चाहे तो दोनों निकाहों में से एक निकाह की इजाजत दे दे और एक को रद्द कर दे। इसकी मर्जी है, क्योंकि ये वकील इसकी मुखालफत कर रहा है तो गोया ये वकील ना रहा बल्कि फजूली है भाई। तो कहते हैं वमन अमरा रजुलन, और जिसने किसी आदमी को हुक्म दिया अयुजविजहुमरातन के उसका निकाह करवा दे किसी औरत से, फजहुस्नतैनी तो उस शख्स ने उसका दो औरतों से निकाह करवा दिया, फी अकदतिन एक ही अकद में, लम तलजम हु वाहिदतुम मिनहुमा तो उस मुअक्किल पर उन दोनों में से एक औरत भी लाजिम नहीं है, उस पर लाजिम नहीं, क्योंकि यह आकद फजूली के आकद की तरह हुआ भाई। लिअन्नहु ला वजह इलातन जी, अब वजह बताएंगे, दोनों भी उस पर लाजिम नहीं और दोनों में से एक भी लाजिम नहीं। दोनों तो इसलिए लाजिम नहीं क्योंकि वकील ने इसकी मुखालफत की है, इसने एक निकाह का कहा था, इसने दो निकाहों का नहीं कहा था, तो दोनों इस पर लाजिम नहीं। अच्छा भाई चलो, इसने एक निकाह का तो कहा था, एक को तो उस पर लाजिम हो जाना चाहिए। कहते हैं नहीं, यहां यहां अब दो निकाह करवाए हैं तो दोनों में से किसी एक को तरजीह दी जाए उसकी कोई वजह नहीं है जी। दोनों निकाहों में से किसी एक को भी तरजीह देने की कोई वजह नहीं, बगैर वजह के आप किसी एक निकाह को तरजीह नहीं दे सकते कि इस औरत के साथ जो निकाह हुआ है वो तो इस पर लाजिम हो जाए और दूसरी औरत के साथ जो निकाह हुआ है वो इस पर लाजिम ना हो, वहां तरजीह की कोई वजह नहीं है भाई। तो लिहाजा किसी एक मुतायन के साथ निकाह को भी तरजीह नहीं दी जा सकती और गैर मुआयन के साथ भी निकाह को नाफिज करार नहीं दिया जा सकता कि यूं कहा जाए कि इन दो औरतों में से एक के साथ निकाह हो चुका है, हां ला अलत तायीन, यानी तायीन नहीं है कौन सी वाली से हुआ है लेकिन एक के साथ हो चुका है भाई, इसमें तो फायदा ही कोई नहीं है। निकाह किस लिए किया जाता है? ताकि बीवी मिल जाए भाई, घर आबाद हो जाए, आगे औलाद वगैरह हासिल हो। तो जब दो औरतों में से एक ला अलत तायीन इसकी बीवी है, तायीन ही नहीं है कौन सी वाली के साथ निकाह नाफिज करार दिया गया है और कौन सी वाली के साथ निकाह नाफिज करार नहीं दिया गया, तो इसके लिए तो किसी एक से भी सोहबत जायज नहीं होगी और नीज वो औरतें भी मुअल्लक रहेंगी, वो आगे भी निकाह नहीं कर सकती। लिहाजा किसी एक मुतायन में भी निकाह को नाफिज करार नहीं दिया जा सकता और किसी एक गैर मुतायन में भी निकाह को नाफिज करार नहीं दिया जा सकता। तो अब आखिरी सूरत यही रह गई कि तफरीक करवाना पड़ेगी, जुदाई करवाना पड़ेगी। बात समझ में आ गई, दोनों को नाफिज भी करार नहीं दे सकते क्योंकि वकील ने मुखालफत की है और दोनों में से एक में निकाह को नाफिज करार दिया जाए उसकी भी फिर दो सूरतें हैं कि एक गैर मुआयन में निकाह को नाफिज करार दिया जाए उसका फायदा कोई नहीं, और अगर किसी एक मुआयन औरत के अंदर निकाह को नाफिज करार दे दिया जाए उसकी भी कोई वजह नहीं है क्योंकि तरजीह के लिए कोई वजह चाहिए भाई, तो लिहाजा अब तफरीक ही करवाना पड़ेगी। हां अलबत्ता मैंने बताया कि ये मुअक्किल की मर्जी है, वो चाहे तो दोनों निकाहों की इजाजत दे दे और चाहे तो दोनों में से किसी एक निकाह की इजाजत दे दे भाई, और चाहे तो दोनों को रद्द कर दे। तो कहते हैं लम तलजम हु वाहिदतुम मिनहुमा तो उस पर उन दोनों में से एक भी लाजिम नहीं है, लिअन्नहु ला वजह इला तन्फीदिहिमा लिल मुखालफति इसलिए क्योंकि कोई वजह नहीं है, कोई सूरत नहीं है इला तन्फीदिहिमा इन दोनों के अंदर निकाह को नाफिज करार देने की, लिल मुखालफति इसलिए क्योंकि वकील ने मुअक्किल की मुखालफत की है, मुअक्किल ने तो एक निकाह का कहा था, इसने दो इकट्ठे करवा दिए, वला इलत तनफीजी फी इहदाहुमा गैर आइनीन और न इसकी कोई सूरत है कि निकाह को नाफिज करार दे दिया जाए, फी इहदाहुमा गैर आइनीन इन दो औरतों में से किसी एक गैर मुआयन के अंदर उसमें भी निकाह को नाफिज करार देने की कोई सूरत नहीं, लिल जहालती जहालत की वजह से कि फिर तो पता ही नहीं चलेगा किस औरत के साथ इसका निकाह नाफिज है और किसके साथ नाफिज नहीं, वला इलत तायीन, और तायीन की भी कोई सूरत नहीं है कि किसी एक मुतायन औरत के साथ निकाह को नाफिज करार दे दिया जाए। लियादमिल औलवियती, क्योंकि यहां औलवियत नहीं है, यानी कोई एक भी उनमें से काबिल तरजीह नहीं है। कैसे किसी एक को हम तरजीह दे सकते हैं बगैर किसी वजह के? भाई फतायन तफरीक, तो तफरीक मुतायन हो गई कि जुदाई करवाई जाएगी। बात समझ में आ गई? ये वो सूरत है जब वो इजाजत नहीं देता, जब वो इजाजत नहीं देता तो दोनों को भी नाफिज नहीं कर सकते और दोनों में से एक मुतायन या गैर मुतायन को भी नाफिज नहीं कर सकते। अगर वो इजाजत दे देगा फिर तो हो जाएगा, चाहे दोनों से इजाजत दे चाहे किसी एक से। वमन अमरहू अमीर उन भी अयुजवीजहुम रातन फजवजहु अमतन लिगैरिही जाजा। सूरत मसला ये, एक शख्स ने दूसरे को वकील बनाया कि किसी औरत से मेरा निकाह करवा दो, उसने किसी गैर की बांदी से उसका निकाह करवा दिया। याद रखो मतन के अंदर बांदी जिक्र होगा कि बांदी से निकाह करवा दिया, तो बांदी से यहां बांदी ही नहीं मुराद बल्कि गैर कुफ मुराद है। यानी हम पल्ला औरत के साथ निकाह नहीं करवाया बल्कि गैर कुफ औरत के साथ उस आदमी का निकाह करवा दिया। तो इस सूरत में क्या यह निकाह मुनाकिद हुआ या मुनाकिद नहीं हुआ? तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं यह निकाह मुनाकिद हो जाएगा। वजह यह कि उस हुक्म देने वाले ने कहा था किसी औरत से मेरा निकाह करवा दो, और बांदी भी तो औरत ही है, आजाद औरत भी औरत होती है और बांदी भी औरत। तो उसने इमरा का लफ्ज बोला, औरत का लफ्ज बोला, और औरत का लफ्ज या इमरा का लफ्ज तो आजाद औरत पर भी बोला जाता है और बांदी पर भी बोला जाता है, तो यह लफ्ज मुतलक है। इमरा का लफ्ज क्या है? मुतलक है, इसमें कोई कैद नहीं है कि यह कुफ मुराद है या गैर कुफ मुराद है। तो जिसमें भी वो निकाह करवा दे वकील, एक शख्स ने दूसरे को वकील बनाया है, तो वो वकील चाहे कुफ में निकाह करवाए चाहे गैर कुफ में, निकाह मुनाकिद हो जाएगा इमाम साहब के नजदीक। जबकि साहिबैन फरमाते नहीं, इस तरह जब किसी को कहा जाता है तो वहां कुफ का इरादा किया जाता है कि बराबर की औरत के साथ मेरा निकाह करवाओ, बराबर के खानदान वाली हो, तो लिहाजा कुफ के अंदर ही निकाह वकील करवा सकता है, गैर कुफ में करवाएगा तो वह निकाह मुनाकिद नहीं होगा। तो कहते हैं वह मन अमरहू अमीर, और जिसको अमीर ने हुक्म दिया, अमीर यानी हाकिम, हाकिम जिसको हाकिम ने हुक्म दिया भी अयुजब विजहुमरा अतन के वो निकाह करवा दे उसका किसी औरत के साथ। ये जो इमरा का लफ्ज आया ना, सारे मसले का दारोमदार इस पर है। अमीर ने किसी को हुक्म दिया भी अयुजब विजहू इमरा अतन के उसका निकाह करवाए किसी औरत से। इमाम साहब फरमाते हैं इमरा का लफ्ज बांदी पर भी बोला जाता है, यानी कुफ पर भी बोला जाता है और गैर कुफ पर भी। तो वकील ने मुवक्किल की मुखालफत नहीं की, वकील ने मुवक्किल के कहने पर अमल किया है, चाहे गैर कुफ में करवाया लेकिन उसने तो इमरा का लफ्ज बोला था और गैर कुफ पर भी इमरा का लफ्ज बोला जाता है। और नीज वमन अमरहू अमीर, देखो मतन के अंदर अमीर आया यानी हाकिम ने किसी आदमी को हुक्म दिया, फिर भी निकाह नाफिज हो जाएगा। तो मतन के अंदर अमीर कहा, कोई आदमी नहीं कहा, क्योंकि जब अमीर का यह निकाह गैर कुफ में नाफिज हो रहा है तो बाकियों का बतरीके औला नाफिज होगा गैर कुफ के अंदर। तो कहते हैं वमन अमरहू अमीर, और जिसको किसी हाकिम ने हुक्म दिया भी अयुजब विजहुमरा अतन के वो उसका निकाह करवा दे किसी औरत से, फजव्वजहू अमतन लिगैरिही तो उसने उसका निकाह करवा दिया अमतन लिगैरिही किसी दूसरे की बांदी से। भाई ये लिगैरिही की कैद जरूरी है, वजह यह कि अगर ये वकील अपनी बांदी से निकाह करवाएगा फिर मुनाकिद नहीं होगा निकाह। वजह यह कि अपनी बांदी से निकाह करवा रहा है वकील तो ये दिलों में बदगुमानी आती है, मालूम हुआ ये इस निकाह से फायदा उठाना चाह रहा है। दूसरे आदमी ने तो इसको वकील बनाया था कि मेरा क्या करवाओ, निकाह करवाओ, यानी मेरे लिए ये आकद करवाओ, और ये खुद इस आकद से फायदा उठाना चाह रहा है। किस तरह फायदा उठाएगा कि भाई देखो अमीर से बांदी का निकाह हो जाएगा तो अमीर से इस आदमी का भी ताल्लुक बन जाएगा, या अमीर की मिसाल छोड़ो कोई और आदमी है उसने कहा था और इसने अपनी बांदी से अगर निकाह करवाया है तो दिलों में बदगुमानी आती है कि ये अपना फायदा सोच रहा है, इसलिए क्योंकि निकाह के अंदर महर जरूर देना पड़ता है तो इस बांदी को भी महर देना पड़ेगा। अगरचे आजाद औरत का महर ज्यादा होता है और बांदी का महर कम, लेकिन बहरहाल महर तो देना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ माल इस वकील को मिल जाएगा क्योंकि इसकी अपनी बांदी है। वकील जब अपनी बांदी से निकाह करवाएगा तो दिलों में क्या बदगुमानी आती है, यह महर हासिल करने के लिए निकाह करवा रहा है अपनी बांदी का कि मुझे कुछ माल मिल जाए, या इसलिए यह दिलों में बदगुमानी आती है कि बांदी से जो औलाद हासिल होगी वो इसी शख्स की गुलाम या बांदियां होंगे। याद रखो औलाद जो है ना गुलामी और आजादी में मां के ताबे होती है, अगर मां आजाद तो औलाद भी आजाद, और अगर मां बांदी है तो फिर उससे जो औलाद हासिल होगी वो भी सब गुलाम और बांदियां होंगे, और वो उसी शख्स के गुलाम और बांदियां होंगे जिसकी ये बांदी थी। तो ये जो वकील अगर अपनी बांदी का निकाह करवाएगा उस शख्स से तो इस बांदी से जो औलाद हासिल होगी वो इसी वकील के गुलाम और बांदियां बनेंगे। तो लिहाजा अगर अपनी बांदी से निकाह करवाएगा तो दिलों में बदगुमानी आती है कि ये अपना फायदा हासिल करना चाह रहा है, लिहाजा इस सूरत में तो निकाह मुनाकिद नहीं होगा। लेकिन जब गैर की बांदी से निकाह करवाया है अब दिलों में बदगुमानी नहीं आती, लिहाजा ये निकाह मुनाकिद हो जाएगा इमाम साहिब के नजदीक। तो कहते हैं फजा वजहू अमतन ली गैरी ही, तो उस वकील ने उस अमीर का निकाह करवा दिया किसी दूसरे की बांदी से, जाज़ इंदा अबी हनीफता रहिमहुल्ला, तो ये इमाम साहेब के नजदीक जायज है। रुजूअन इला इतलाकिल लफ्ज़ व अदमित तोहमती, रुजू करते हुए लफ्ज के मुतलक होने की तरफ और तोहमत के न होने की तरफ। एक तो ये इमरा का लफ्ज मुतलक आया है, उस आदमी ने क्या कहा किसी औरत से मेरा निकाह कर दो, और इमरा का लफ्ज जैसे कुफ वाली औरत पर बोला जाता है गैर कुफ वाली औरत या बांदी वगैरह पर भी बोला जाता है, और नीज गैर की बांदी से निकाह करवाया है लिहाजा दिलों में कोई बदगुमानी भी नहीं आती। तो लफ्ज के मुतलक होने की तरफ देखते हुए और तोहमत नहीं है, लिहाजा इस एतबार से इमाम साहब फरमाते हैं ये निकाह जायज है और मुनाकिद हो जाएगा। ये माना है कि जाज़ इंदा अबी हनीफता रहिमहुल्ला, ये इमाम साहब के नजदीक जायज है। रुजूअन इला इतलाकिल लफ्ज़ व अदमि तोहमती, लफ्ज के मुतलक होने की तरफ रुजू करते हुए और इसी तरह अदम तोहमत की तरफ रुजू करते हुए कि इसमें कोई तोहमत नहीं है भाई। وقال ابو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى لا يجوز صاحبين رحمهم الله, فرماتے ہیں جائز نہیں ہے یہ نکاح الا ان يزوجه كفئا, مگر یہ کہ اس کا نکاح کروائے كفئا برابر اور ہم پلہ سے, کف میں برابر لوگوں میں نکاح کروائے گا تو نکاح ہوگا۔ دلیل ان کی کہتے ہیں لان المطلق ينصرف الى المتعارف, اس لیے کیونکہ جو مطلق ہوتا ہے وہ پھر جاتا ہے پلٹ جاتا ہے الى المتعارف, متعارف کی طرف۔ متعارف کا معنی ہے جو رائج ہے اور شائع ہے, لوگوں کے اندر رائج ہے اور شائع ہے بھائی, اور وہ کیا ہے کہتے ہیں وہ ہوا تزوج بالاکفاء, اور وہ ہم پلہ سے نکاح کرنا ہے بھائی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ لوگ عموماً ہم پلہ سے ہی نکاح کرتے ہیں, غیر کف میں نکاح نہیں کرتے۔ لہذا اگرچہ امرأة کا لفظ مطلق تھا, امرأة کا لفظ مطلق تھا, لیکن لوگوں کے اندر کیا رائج ہے کہ وہ کس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں, ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرتے ہیں, لہذا اس کو بھی اسی متعارف پر محمول کیا جائے گا۔ اور متعارف تو کس میں نکاح ہے, ہم پلہ کف کے اندر, لہذا کف کے ساتھ ہی نکاح مراد ہے۔ کف میں نکاح کروائے گا تو ہوگا, غیر کف میں کروائے گا تو نکاح نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں دیکھیے, کہتے ہیں لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف, اس لیے کیونکہ مطلق جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے متعارف یعنی رائج اور شائع کی طرف۔ وہ تزوج بالأكفاء, اور وہ ہم پلہ کے ساتھ نکاح ہے۔ قلنا, اب جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ امام صاحب کی طرف سے۔ قلنا, ہم جواب دیتے ہیں العرف مشترکن, تو جواب دیتے ہیں العرف مشترکن, کہ عرف تو مشترک ہے۔ आपने कहा कि उर्फ क्या है, लोगों में मुतारफ क्या है, लोगों में शाय और राइज क्या है कि वो कुफ में निकाह करते हैं, तो साहिब हिदायत जवाब दे रहे हैं इमाम साहब की तरफ से, नहीं, लोगों में दोनों राइज हैं, लोग कुफ में भी निकाह करते हैं और गैर कुफ में भी निकाह करते हैं। तो कुल ना, हम कहते हैं अल उर्फ मुश्तरक, उन उर्फ तो मुश्तरक है। उर्फ कहते हैं आम लोगों की आदत को, कि आम लोगों की आदत तो मुश्तरक है, यानी वो कुफ और गैर कुफ दोनों जगह निकाह करते हैं। औ हुआ उर्फुन अमलियुन, या ये दूसरा जवाब दे रहे हैं, या ये उर्फ अमली है, फला यसलुहु मुकय्यदन, लिहाजा ये उसके लिए मुकय्यद और मुखसिस नहीं बन सकता। याद रखो भाई, याद रखो, उर्फ कहते हैं आम लोगों की आदत और आम लोगों का तरीका, और यहां बात चल रही है तख्सीस की। इमरा का लफ्ज जिक्र किया कि किसी इमरा से मेरा निकाह करवा दो, इमाम साहब फरमाते हैं चाहे कुफ में करवा दे चाहे गैर कुफ में करवा दे, निकाह मुनाकिद हो जाएगा। साहिबैन फरमाते हैं नहीं, यहां इमरा से मुराद वो इमरा है जो उसका कुफ हो, उसके बराबर की हो, हम पल्ला हो। तो मालूम हुआ वो इमरा के लफ्ज की तख्सीस कर रहे हैं, किसके साथ, उस इमरा के साथ जो कुफ है। वैसे तो इमरा का लफ्ज मुतलक है, तो यहां तख्सीस की बात चल रही है। तो याद रखो तख्सीस के सिलसिले में उर्फ दो किस्म पर है, एक उर्फ लफ्जी है और एक उर्फ अमली है। उर्फ लफ्जी यह है कि उर्फ यानी आम लोग जो हैं किसी लफ्ज को खास कर दें बाज़े अफराद के साथ, एक लफ्ज आम है उसके बहुत सारे अफराद हैं, लेकिन आम लोग उस लफ्ज को उसी के अफराद में से बाज़े अफराद के साथ खास कर दें। जैसे उसकी मिसाल है मसलन दाबतुन, दाबतुन अरबी जुबान में जमीन पर चलने वाले हर जानदार को कहते हैं, लेकिन अरबों के हां अब यह राइज हो गया, कसीरुल इस्तेमाल हो गया उन हैवानात के लिए जिन पर सवारी की जाती है या बोझ लादा जाता है, यानी घोड़ा गधा खच्चर वगैरह। तो अब देखो दाब्बा का लफ्ज तो आम था, हर जानदार के लिए था, लेकिन फिर इसको अरबों ने खास कर दिया बाज जानदारों के साथ, यानी जो बोझ उठाने वाले हैं जिन पर सवारी की जाती है। तो इसको कहते हैं तख्सीस, के लफ्ज तो आम हो लेकिन आम लोग उसको इस्तेमाल बाज अफराद के साथ करने लगे। तो अब जब भी दाबा का लफ्ज बोला जाता है उससे मुराद सवारी वगैरह का जानवर होता है भाई। इसी तरह दूसरी मिसाल ले लो माल, माल का लफ्ज हर वो चीज जो माल दौलत है, जिसकी कुछ मालियत है, उस पर माल का लफ्ज बोला जाता है, चाहे वो सामान्य तिजारत है, दिरहम है, दीनार है वगैरह। तो ये माल का लफ्ज आम था, लेकिन जमाने जाहिलियत के अंदर यह लफ्ज खास कर दिया था ऊंटों के साथ अरबों ने, यानी ऊंटों पर माल का लफ्ज बोलते थे क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी दौलत थी भाई। तो ये भी माल के अफराद में से एक फर्द था, तो इसी के साथ उन्होंने इस लफ्ज को खास कर दिया। तो देखो माल का लफ्ज तो आम था, हर चीज जिसकी मालियत है वो इसके अंदर दाखिल हो रही थी, ऊंट भी इसके अंदर दाखिल हो रहे थे, लेकिन अरबों ने इसको खास कर दिया इन ऊंटों के साथ, यानी बाज़े अफराद के साथ, माल के बाज़े अफराद के साथ इस लफ्ज को खास कर दिया। तो यह है उर्फ लफ्जी की मिसाल। दाबा भी किसकी मिसाल है, उर्फ लफ्जी की, के दाबा का लफ्ज अब वो खास जो है घोड़े गधे और खच्चर पर बोलते हैं, और माल का लफ्ज भी जमाने जाहिलियत में ये भी उर्फ लफ्जी की मिसाल है कि वो इसको सिर्फ ऊंटों पर बोलते थे, बाकी अमवाल पर नहीं भाई। और एक होता है उर्फ अमली, उर्फ अमली यह है कि लोग किसी चीज की तख्सीस कर दें अपने अमल के जरिए, क्या करें अमल, वहां लफ्ज नहीं होता। मसलन देखो नए कपड़े पहनना, नए कपड़े सारा साल पहने जा सकते हैं, लेकिन आम लोगों की आदत क्या है कि वो नए कपड़े ईद के मौका पर पहनते हैं। तो देखो यहां कोई लफ्ज वगैरह नहीं है, हां वो नए कपड़े पहनने का जो अमल है उसकी लोगों ने तख्सीस कर दी है ईद के साथ। भाई आजकल तो अल्लाह की नियामतें इतनी ज्यादा हो गई, और कपड़े आम हो गए, लोग सारा साल नए कपड़े पहनते रहते हैं, लेकिन कदीम जमाने में तो कपड़े बड़ी मुश्किल से मिलते थे, कपड़े हाथ से बुने जाते थे, तो लोग सिर्फ ईद ही के मौके पर नए कपड़े पहनते थे। तो अब देखो, नए कपड़े पहनना वो तो आम है, किसी भी वक्त पहने जा सकते हैं, लेकिन उर्फ आमली क्या था, लोगों ने इसको खास कर दिया था ईद के साथ कि ईद के मौके पर ही अमूमन नए कपड़े पहनते थे। तो ये क्या है, उर्फ आमली की मिसाल है, यहां कोई लफ्ज वगैरह नहीं, बस लोगों का अमल है कि उन्होंने तख्सीस कर दी है नए कपड़ों की ईद के साथ। बात समझ में आ गई। तो उर्फ कितनी किस्म पर हुआ, दो। एक उर्फ लफ्जी है जिसमें उर्फ वाले लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं किसी खास माना के लिए, और एक उर्फ अमली है, वहां लफ्ज नहीं होता, बस लोगों का अमल होता है एक। तो अब जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया, साहिबैन ने क्या कहा था कि एक शख्स ने दूसरे को वकील बनाया है, मेरा निकाह करवा दो। तो यहां इमरा का लफ्ज अगरचे मुतलक है, लेकिन मुतलक को मुतआरफ पर महमूल किया जाता है, और लोग अमूमन हम पल्ला औरत के साथ निकाह करते हैं। तो उसका पहला जवाब दिया कि उर्फ मुश्तरक है, कुफ में भी निकाह किया जाता है और गैर कुफ में भी। यह दूसरा जवाब दे रहे हैं कि आप दलील में उर्फ अमली को पेश कर रहे हैं, बात चल रही है लफ्ज इमरा की, तो आपको दलील में उर्फ लफ्जी को पेश करना चाहिए कि देखो इमरा का लफ्ज लोग कुफ में इस्तेमाल करते हैं, ऐसी मिसालें देनी चाहिए थी, लेकिन आपने लोगों के अमल को दलील के तौर पर पेश किया। तो जिस चीज की बहस है दलील में भी उसी को पेश करना चाहिए, लफ्ज की बहस है तो दलील भी लफ्ज ही होना चाहिए, आप दलील में अमल को पेश कर रहे हैं, तो लिहाजा ये उर्फ अमली उस लफ्ज इमरा के लिए मुकय्यद और मुखसिस नहीं बन सकता, इसके जरिए उसमें तख्सीस पैदा नहीं हो सकती। भाई देखो ना, इमरा का लफ्ज मुतलक है, मुतलक है, और आप साहिबैन क्या फरमा रहे हैं कि यहां इमरा से क्या मुराद है, ऐसी इमरा मुराद है जो कुफ में से हो, मालूम हो वो इस इमरा की तख्सीस कर रहे हैं, इसको मुकय्यद कर रहे हैं किसके साथ, कुफ के साथ, और दलील में क्या पेश कर रहे हैं, उर्फ अमली। तो उर्फ अमली के जरिए आप इस मुतलक को मुकय्यद नहीं कर सकते। ये माना है औ हुआ उर्फुन अमलियुन, या ये उर्फ अमली है जो आपने जिक्र किया कि इन लोग कुफ में निकाह करते हैं, तो ये उर्फ अमली है, फला यसलुहु मुकय्यदन, लिहाजा ये उस लफ्ज इमरा के लिए मुकय्यद और मुखसिस नहीं बन सकता, ये उसमें तख्सीस पैदा नहीं कर सकता कि आप कहें कि ये इमरा का लफ्ज खास है कुफ के साथ। वदा करा फिल वकालती, और इमाम मोहम्मद रहमल्ला ने जिक्र फरमाया है फिल वकालती किताबुल वकालत में, इससे मुराद किताबुल वकालत है जो मबसूत में जिक्र फरमाई है इमाम मोहम्मद रहमल्ला ने। मबसूत आप पहले भी जिक्र हो चुका है, इमाम मोहम्मद रहमल्ला की किताब है भाई, उसके अंदर किताबुल वकालत के अंदर कहते हैं इमाम मोहम्मद रहमल्ला ने यह मसला जिक्र फरमाया है। तो कहते हैं वदकरा फिल वकालती, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने किताबुल वकालत जो है मबसूत के अंदर उसमें जिक्र किया है कि अन एतबार अल कफाअति फी हाद इस्तेहसान इंदहुमा, के कफाअत का एतबार करना फी हादा इस सूरत में इस्तेहसान इंदहुमा, ये इस्तेहसान है साहिबैन के नजदीक। भाई देखिए देखिए, इससे पहले कफाअत की फसल चल रही थी भाई, और आपने पढ़ा था कि कफाअत मर्दों में मोतबर है, औरतों में कफाअत मोतबर नहीं, यानी औरत का निकाह करवाया जाए तो कुफ में करवाया जाए, क्योंकि औरत अदना शख्स की हाकिमियत को पसंद नहीं करती, तो मर्द में कफाअत मोतबर है, औरतों में कफाअत मोतबर नहीं, लेकिन इस मसले में औरतों के अंदर कफाअत का एतबार किया जा रहा है। साहिबैन क्या फरमाते हैं कि वकील को इस शख्स का निकाह ऐसी औरत से करवाना चाहिए जो इस मर्द की कूफ हो, इसके हम पल्ला हो गई। तो कहते हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने मबसूद की किताबुल वकालत के अंदर यह जिक्र फरमाया है कि जो साहिबैन ने इस मसले के अंदर औरत की कफाअत का एतबार किया है ये इस्तेहसान है। इस मसले में वैसे तो औरत में कफाअत का एतबार नहीं, लेकिन इस मसले के अंदर जो औरत की कफाअत का एतबार किया है साहिबैन ने वो استحسان ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا استحسان کسے کہتے ہیں. استحسان وہ متفق علیہ دلیل ہے جس کے مقابلے میں قیاس آ جائے. جب مثلا آیت ہے, آیت کے مقابلے میں قیاس آ جائے, یا حدیث ہے اور اس کے مقابلے میں قیاس آ جائے, یا اجماع ہے اور اس کے مقابلے میں قیاس آ جائے. اب ظاہر سی بات ہے ترجیح تو آیت کو ہوگی, حدیث کو ہوگی اور اجماع کو ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ان کو استحسان کہیں گے. یہ جو آیت ہے یا حدیث ہے یا اجماع جس کے مقابلے میں کیا آیا قیاس, تو اس آیت کو ترجیح ہوگی لیکن اس کو استحسان کہیں گے. اسی طرح اس حدیث کو ترجیح ہوگی لیکن اس حدیث کو اب کیا کہیں گے؟ استحسان. یا اسی طرح اجماع کے مقابلے میں قیاس آئے تو اجماع کو ترجیح ہوتی ہے کیونکہ اجماع تو قطعی دلیل ہے, لیکن اس اجماع کو اب استحسان کہیں گے. لیکن زیادہ تر میں نے بتایا تھا کہ استحسان کا اطلاق قیاس خفی پر ہوتا ہے, اور قیاس یاد رکھو قیاس عقلی دلیل کو کہتے ہیں, اور یہ عقلی دلیل دو قسم پر ہو سکتی ہے, وہ کبھی قیاس جلی ہوگا اور کبھی قیاس خفی. قیاس جلی کا معنی ہے ظاہر, یعنی عقلی دلیل ظاہر ہے, عقل فوراً وہاں تک پہنچ جاتی ہے, تو اس کو قیاس جلی کہتے ہیں. اور بعض اوقات بات گہری ہوتی ہے, خوب غور و فکر کرنا پڑتا ہے, پھر ذہن وہاں تک پہنچتا ہے, اس کو قیاس خفی کہتے ہیں. تو استحسان کا زیادہ تر اطلاق قیاس خفی پر ہوتا ہے, لیکن قیاس خفی کو بھی استحسان تب کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی آ رہا ہو. اگر قیاس خفی کے مقابلے میں قیاس جلی نہ ہو, پھر جتنا مرضی گہرا قیاس ہو اس کو قیاس ہی کہیں گے, استحسان نہیں کہیں گے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ فتویٰ ہمیشہ استحسان پر ہوتا ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے, اسی لیے اس کو استحسان کہتے ہیں. مستحسن کا معنی پسندیدہ, تو استحسان کو استحسان اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پسندیدہ ہوتا ہے, اس میں لوگوں کے لیے راحت اور آسانی ہوتی ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ فتویٰ ہمیشہ استحسان پر ہوتا ہے. تو صرف 20-22 مسائل ایسے ہیں جہاں قیاس پر فتویٰ ہے, ورنہ ہر جگہ استحسان پر فتویٰ ہوتا ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے, یہ پسندیدہ ہوتا ہے. اب دیکھو, ویسے تو عورتوں کے اندر کفاعت معتبر نہیں, لیکن صاحبین یہاں پر جو کفاعت کا اعتبار کر رہے ہیں یہ استحسان ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ قیاس خفی ہے بھائی. اور قیاس خفی کو بھی استحسان تب کہتے ہیں جب اس کے مقابلے میں کیا موجود ہو؟ قیاس جلی. اور یہاں قیاس جلی موجود ہے, وہی جو امام صاحب کی دلیل ہے. امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ امرأہ کا لفظ مطلق ہے, لہذا چاہے کف میں نکاح کروائے چاہے غیر کف میں, یہ نکاح منعقد ہونا چاہیے بھائی. تو قیاس تو تقاضا کر رہا ہے دونوں جگہ نکاح ہونا چاہیے, لیکن استحسان قیاس خفی بتلاتا ہے کہ نہیں, یہاں بھی عورت کے اندر کفاعت کا اعتبار کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وذکر فی الوکالتی, اور امام محمد رحم اللہ نے مبسوط کی کتاب الوکالت میں ذکر فرمایا ہے کہ ان اعتبار الکفاعتی فی ہذا, کہ اس مسئلے میں جو عورتوں کی کفاعت کا اعتبار کیا گیا ہے, استحسان عندہما, یہ صاحبین کے نزدیک استحسان ہے. اب اس کی وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں, قیاس خفی کیا ہے, گہری بات کیا ہے. کہتے ہیں لئن کل احد, جی پہلے اس کو سمجھ لو. کہتے ہیں اس لیے کیونکہ مطلقاً کہیں پر بھی نکاح کرنا اس سے تو کوئی عاجز نہیں ہوتا. ہاں کف کے اندر نکاح کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, غیر کف میں نکاح کرنا کوئی مشکل نہیں. ایک شخص نکاح کرنا چاہتا ہے تو غیر کف کے اندر تو اس کو فوراً ہی رشتہ مل جائے گا, کوئی بڑی عمر والی مل جائے گی, کوئی بوڑھی مل جائے گی, کوئی ادنا چھوٹے خاندان والی مل جائے گی, تو وہ مشکل نہیں ہوتا. لیکن کف کے اندر نکاح کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. تو اس کے اندر لوگ دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ جو شخص, یہ جو امیر دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے میرا نکاح کروا دو, تو یہ کف کے اندر نکاح کرنا چاہتا ہے, اسی لیے مدد طلب کر رہا ہے. اگر غیر کف میں امیر نکاح کرنا چاہتا وہ تو اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا تو استحسانن تو یہاں کفاعت کا بھی اعتبار کیا جائے گا, کیونکہ غیر کف کے اندر نکاح کسی کے لیے مشکل نہیں ہوتا, کف کے اندر صرف نکاح مشکل ہوتا ہے اور اسی میں دوسروں سے مدد طلب کی جاتی ہے. تو یہاں پر جب کسی کو وکیل بنا رہا ہے اور مدد طلب کر رہا ہے, معلوم ہو یہ کف میں نکاح کرنا چاہتا ہے, لہذا یہاں کفاعت معتبر ہوگی عورتوں کے اندر بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں لأن كل أحد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوج، اس لیے کیونکہ ہر ایک وہ عاجز نہیں ہوتا عن التزوج کہ وہ نکاح کر لے، بمطلق الزوج مطلق زوج سے. یاد رکھو زوج کا لفظ خاوند اور بیوی دونوں پر بولا جاتا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا زوج ہیں، ایک دوسرے کا جوڑا ہیں. بیوی کے لیے جوڑا کون ہے؟ خاوند. اور خاوند کے لیے جوڑا کیا ہے؟ بیوی. تو زوج کا معنی جوڑا، یہ میاں اور بیوی دونوں پر بولا جاتا ہے. تو دیکھو عورت بھی اگر غیر کف میں نکاح کرنا چاہے فوراً اس کو رشتہ مل جائے گا، اسی طرح مرد بھی غیر کف میں نکاح کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں مشکل ہوتی ہے تو کس کے اندر؟ کف کے اندر. یہ معنی ہے لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَعْجِزُ عَنِ التَّزَوُّجِ بِمُطْلَقِ الزَّوْجِ، اس لیے کیونکہ ہر ایک وہ عاجز نہیں ہوتا کہ مطلق زوج سے نکاح کر لے، یعنی مطلق زوج جو چاہے کف ہو یا غیر کف. فَكَانَتِ الْإِسْتِعَانَةُ فِي التَّزَوُّجِ بِالْكُفِّ، استعانت کا معنی مدد طلب کرنا. فکانت الاستعانت، تو یہ مدد طلب کرنا ہوگا. فی تزوج بالکفی، کف میں نکاح میں، کف کے اندر نکاح میں یہ مدد طلب کرنا ہوگا، یہ جو وکیل بنایا ہے. واللہ اعلم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں. آگے دیکھیے بھائی، باب المہر. جی اب مہر کا بیان شروع ہوا. بھائی یاد رکھو، یاد رکھو نکاح کے اندر مہر ضرور آئے گا. کوئی بھی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو مہر ضرور آئے گا، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا. بھائی قرآن میں اللہ تعالی محرمات کا ذکر فرماتے ہیں، وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، اور اس کے بعد آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یعنی ان عورتوں کے علاوہ اور عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. پہلے محرمات کا ذکر جن سے نکاح کی کوئی صورت نہیں، اور اس کے بعد آگے اللہ فرما رہے ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ اور عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. اَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ ان کو تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ذریعے. معلوم ہوا مہر دینا پڑے گا، مال خرچ کرنا پڑے گا، ویسے نکاح نہیں کر سکتے. اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو شخص تم میں سے آزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر وہ کس سے نکاح کر لے؟ باندیوں سے نکاح کر لے. جو آزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ آزاد عورت کا مہر زیادہ ہوتا ہے اور باندی کا مہر کم، تو جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا یعنی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو وہ باندی سے نکاح کر لے. معلوم ہے مال دینا پڑے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی، مہر دینا پڑے گا. بھائی تو مہر جو ہے وہ نکاح میں ضرور آئے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا نکاح کے اندر بھی مہر کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ مہر آئے گا تو ضرور، آپ ذکر کریں یا نہ کریں، لیکن کیا بغیر مہر کو ذکر کیے نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھو مہر کو ذکر نہ کیا جائے پھر بھی نکاح ہو جائے گا، البتہ مہر خود بخود وہاں آ جائے گا اور پھر وہ مہر مثل آئے گا، یعنی اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے، اس جیسے یعنی جس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے اسی کے خاندان میں اس جیسی عورت کا جو مہر ہوتا ہے وہ مہر آ جائے گا. تو کہتے ہیں قال ویصح النکاح وان لم یسم فیہ مہرا، صاحب قدوری فرماتے ہیں اور نکاح صحیح ہے وان لم یسم فیہ مہرا، اگرچہ اس کے اندر نکاح کرنے والا مہر کو ذکر نہ کرے. لان النکاح عقد زمام وازدواج لغۃ فیتم بالزوجین. جی صاحب ہدایہ کی فصیح و بلیغ عبارتیں چل رہی ہیں. بھائی صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے اس کے مفہوم کے اندر مال کا معنی ہی نہیں ہے، لہذا وہاں مال کو اور مہر کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. نکاح تو عقد انضمام ہے، انضمام کا معنی مل جانا، جڑ جانا. اسی طرح یہ عقد ازدواج ہے، ازدواج کا معنی بھی جوڑا ہو جانا، یوں کہو شادی ہو جانا. تو یہ ملنے والا اور شادی والے عقد کا نام ہے. ملنے والے اور شادی والے، یوں کہو جوڑا ہونے والے عقد کا نام ہے، اس کے مفہوم میں مال داخل نہیں. इसका क्या माना है? मिल जाना और जोड़ा हो जाना, और उसके लिए ज़ौजैन्स काफी हैं भाई, एक मर्द और एक औरत। जब यह आकद किया जाएगा इनमें इंजिमाम आ जाएगा, ये जुड़ गए, मिल गए, यानी मियां बीवी बन गए। या इसी तरह ये आकद इज़दिवाज है, जोड़ा होना, और जोड़ा बनने के लिए क्या चाहिए? एक मर्द और एक औरत चाहिए जो आपस में जोड़ा बन जाए, मियां बीवी बन जाए। तो लिहाजा ये आकद निकाह ये मिलने और जोड़ा होने वाला आकद है, तो इसमें सिर्फ ज़ौजैन की जरूरत है, क्योंकि ज़ौजैन होंगे तो जोड़ा बनेगा, ज़ौजैन होंगे तो दोनों आपस में मिलेंगे और मियां बीवी बनेंगे। लिहाजा माल वगैरह इसके मफहूम में और इसके माना में दाखिल ही नहीं है भाई, तो माल का जिक्र भी जरूरी नहीं। कहते हैं लिए अन्न निकाह अक्दुन जिमामी वज़दिवाजिन लुगतन, इसलिए क्योंकि निकाह जो है इंजिमाम यानी मिलने का आकद है, वज़दिवाजिन और जोड़ का आकद है निकाह जो है। फिर तर्जमा सुनिए लिए अन्न निकाह अक्दुन जिमामी वज़दिवाजिन लुगतन, इसलिए क्योंकि निकाह जो है मिलने और जोड़ा होने का आकद है लुगतन, अरबी जुबान के एतबार से। अरबी जुबान के एतबार से निकाह सिर्फ इस आकद का नाम है जिसके लिए सिर्फ ज़ौजैन चाहिए, जिनको जोड़ा बनाया जा रहा है। फयतिम्मु बिज़ौजैन, लिहाजा ये आकद ताम हो जाएगा ज़ौजैन यानी मियां बीवी के जरिए, इनके अलावा किसी माल वगैरह की यहां हाजत नहीं। सुम्मल महरु वाजिबुन शरअन, फिर ये जो महर है ये शरअन वाजिब है भाई, निकाह के अपने मफहूम में माल का कोई माना नहीं। हां लेकिन शरीयत ने महर को वाजिब किया है, शरअन महर वहां जरूर आएगा, क्योंकि अभी गुजर गया अन तब तक भी अमवालिकुम के और औरतें हलाल हैं, और औरतों में क्या करना पड़ेगा? माल खर्च करना पड़ेगा यानी महर देना पड़ेगा, तो शरअन ये वाजिब है। या यूं कहो कि जो महर है ये निकाह का हुक्म है, महर निकाह का हुक्म है, और हुक्म हमेशा अकद के बाद आया करता है। जैसे आप बेउ शिरा करते हैं, जैसे ही आप ईजाब और कबूल करेंगे तो मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाएगा, तो ये मुश्तरी मबीए का मालिक बनता है, ये बेउ का हुक्म है। तो बेउ पहले पाई जाएगी और साथ ही अगले लम्हे के अंदर वो मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाएगा। तो हुक्म हमेशा अकद के बाद आया करता है, पहले अकदे बै होगा और फिर साथ ही मुश्तरी क्या बन जाएगा? मालिक बन जाएगा। तो यहां पर भी ये जो महर है ये अकदे निकाह का हुक्म है, अकदे निकाह हो जैसे ही होगा खुद ब खुद क्या आ जाएगा? वहां महर आ जाएगा, उसको जिक्र करना कोई जरूरी नहीं है भाई। बात समझ में आ गई कि हुक्म हमेशा अकद के बाद आया करता है। कहते हैं सुम्मल महरू वाजिबुन शरअन, फिर ये महर जो है शरअन वाजिब है। इबानतन लिशरफिल महल्ली, अब वजह भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई शरअन क्यों वाजिब है, शरीयत ने महर क्यों वाजिब किया, तो उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं। इबानतन, इबानत का माना है इजहार यानी जाहिर करना। इबानतन लिशरफिल महल्ली, शरफ का माना मुअज्जज होना, महल यानी जगह, और मुराद बुज़ा है यानी औरत की शर्मगाह। शरीयत ने महर क्यों वाजिब किया? इबानतन लिशरफिल महल्ली, वो जो महल है यानी वो जो बुज़ा है उसके मुअज्जज होने के इजहार के लिए। भाई वजह यह कि इंसान जो है, इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान मुअज्जज और मुकर्रम है, तो हर इंसानी जुज़ भी क्या है? मुअज्जज है भाई। बात समझ में आ गई? तो बुज़ा यह भी एक औरत का एक उज़्व है, लिहाजा यह भी मुअज्जज है, तो इसके मुअज्जज होने के इजहार के लिए शरीयत ने महर वाजिब किया है। शरीयत बतलाना चाहती है कि यह महल कोई हकीर चीज नहीं है कि बगैर माल के ही आपको हासिल हो जाए और आपके लिए हलाल हो जाए, नहीं, बल्कि यह महल मुअज्जज और मोहतरम है, यहां तुम्हें माल खर्च करना पड़ेगा फिर ही यह तुम्हारे लिए हलाल होगा, वैसे यह तुम्हारे लिए हलाल नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं सुम्मल महरु वाजिबुन शरअन इबानतन लिशरफिल महल, फिर महर जो है वो शरअन वाजिब है उस महल के मुअज्जज होने के इजहार के लिए। फला युहताज इला जिक्री ही लिसिहतिन निकाही, लिहाजा हाजत नहीं है महर के जिक्र करने की निकाह के सही होने के लिए। ये शरअन वाजिब है, खुद निकाह के मफहूम में महर दाखिल नहीं पड़ी। वकदा इदा तज़व्वजहा बिशर्ती अल्ला महरा लहा, दूसरी सूरत, पहली सूरत तो बयान कर दी कि महर आएगा जरूर, आप बेशक जिक्र न करें, यह शरअन वाजिब है। भाई अगर कोई शख्स महर की बाकायदा नफी कर दे, एक औरत से निकाह कर रहा है और कहता है कि मैं महर नहीं दूंगा तुम्हें, बाकायदा उसने नफी कर दी महर की, तो क्या इस सूरत में महर आएगा या नहीं? तो साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि भाई हमने आपको बतला दिया ये महर ये शरीयत ने वाजिब किया है, किसी को यह हक नहीं है कि हक शरा को साकित करे या खत्म करे। तो बेशक वो नफी कर दे, उसके नफी करने से शरीयत का हक साकित नहीं होगा, वहां महर आ जाएगा भाई खुद ब खुद। तो कहते हैं वकदा इजा तज़व्वजहा, और इसी तरह अगर उस औरत से निकाह किया बिशर्ती अल्ला महरा लहा, इस शर्त पर कि उसके लिए कोई महर नहीं होगा, यानी उस सूरत में भी यही मसला है, महर जरूर आएगा। लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दी कि यह शरीयत ने वाजिब किया है। वफीह खिलाफ मालिक रहिमहुल्लाह ताला, और इसमें इमाम मालिक रहिमहुल्लाह का इख्तिलाफ है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो निकाह है ये अक़्दे मुआवजा है, ये निकाह क्या है? अक़्दे मुआवजा है, यानी ये बैअ की तरह है, और इसके अंदर जो महर होता है वो समन की तरह है, समन की तरह है। और जैसे कोई शख्स बैअ करे और उसमें शर्त लगा दे कि मैं समन नहीं दूंगा, तो फिर बैअ होती ही नहीं, बैह के अंदर तो समन जरूरी है। तो जैसे कोई शख्स बैह के अंदर शर्त लगा दे मैं समन नहीं दूंगा, तो वो बैह होती ही नहीं। इसी तरह अगर खावंद निकाह करता है और कहता है मैं महर नहीं दूंगा, तो ये निकाह ही नहीं होगा, तवज्जो है, तो ये निकाह ही नहीं होगा। और कियास तो ये तकाजा करता है कि जब महर को जिक्र न किया जाए तब भी निकाह नहीं होना चाहिए। भाई देखिए ना, हमने बयान कर दिया हमारे नजदीक महर को जिक्र न करो फिर भी निकाह हो जाएगा और खुद ब खुद महर आ जाएगा, वहां महर मिसर। इसी तरह अगर कोई शख्स बाकायदा महर की नफी कर दे, बाकायदा नफी कर दे मैं महर दूंगा ही नहीं, फिर भी निकाह हो जाएगा और खुद ब खुद महर मिसल वहां पर आ जाएगा। जबकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर महर को जिक्र न किया जाए, बिल्कुल खामोशी से निकाह कर लिया और महर को जिक्र ही नहीं किया, फिर तो निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर महर की बाकायदा सराहता नफी कर दी कि महर मैं दूंगा ही नहीं, तो इस सूरत में निकाह ही नहीं होगा। भाई वजह यह कि उनके नजदीक ये निकाह आकदे मुआवजा है, ये बैअ की तरह है, और ये जो महर देता है खावन ये समन की तरह है, और समन के न देने की शर्त अगर बैअ में लगाई जाए तो बैअ बिल इत्तिफाक बातिल है। तो ये निकाह भी क्या होगा जिसमें महर न देने की शर्त लगाई है, ये भी बातिल होगा। इस पर उन पर इश्काल होता है कि यह आपके नजदीक आकदे मुआवजा है, यानी बैअ की तरह है, तो बैअ के अंदर तो समन का जिक्र जरूरी है, अगर समन जिक्र न करें, एक है महर से खामोशी इख्तियार कर लेना जिक्र ही ना करना, और एक है बाकायदा उसकी नफी करना, दोनों में फर्क है, तवज्जो है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब बाकायदा नफी करेगा तब निकाह ही नहीं होगा, हां लेकिन अगर खामोशी से निकाह किया महर को जिक्र ही नहीं किया, बस ये निकाह नहीं दूंगा बल्कि खामोशा, महर के बारे में बात ही कोई नहीं की, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह पर इश्काल होता है कि जब महर से खामोशी इख्तियार की फिर भी तो निकाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैअ की जाए और उसमें समन को सिरे से जिक्र ही ना किया जाए तब भी बैअ नहीं होती, समन की नफी से भी बैअ नहीं होती, और समन के बारे में खामोशी हो फिर भी बैअ नहीं होती। तो लिहाजा जब महर की नफी की सूरत में आपके नजदीक निकाह नहीं हो रहा, तो महर से खामोशी की सूरत में भी निकाह नहीं होना चाहिए। तो वो उसका जवाब देते हैं कि भाई वो तो उसके बारे में तो नस आ गई, मैंने बताया नस कुरान और हदीस को कहते हैं, कि वो तो नस के अंदर जिक्र आ गया कि बगैर महर जिक्र किए भी निकाह हो जाता है। किस तरह? कहते हैं कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला जुनाह अलैकुम इन तलक्तुमुन निसाआ, कि तुम पर कोई हर्ज नहीं है अगर तुम तलाक दे दो अपनी उन औरतों को, मालम तमस्सू हुन्ना, जिनको तुमने छुआ नहीं है, यानी जिनसे तुमने अभी सोहबत नहीं की, जिन औरतों से अभी तुमने सोहबत नहीं की उनको भी तुम तलाक दे सकते हो। औ तफरीजू लहुन्ना फरीजतन, या जिनके लिए तुमने कोई महर मुकर्रर नहीं किया। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक्तुमुन निसात, कि तुम पर कोई हरज नहीं है अगर तुम अपनी उन बीवियों को तलाक दे दो, मालम तमस्सुहुन्ना, जिनसे तुमने सोहबत नहीं की, औ तफरीजू लहुन्ना फरीजतन, या जिनके लिए तुमने कोई महर मुकर्रर नहीं किया। मालूम हुआ जिसके लिए महर मुकर्रर नहीं किया उसको भी तलाक दे सकते हो, और तलाक तो हमेशा निकाह के बाद आया करती है। मालूम हुआ महर मुकर्रर नहीं किया था फिर भी निकाह हो गया है, अब तुम तलाक दे सकते हो। तो इस नस से पता चल रहा है कि अगर महर को जिक्र न किया जाए फिर भी निकाह हो जाएगा, इसलिए हमने यहां कियास को तर्क कर दिया। ये जवाब किसकी तरफ से चल रहा है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह पर एतराज क्या होता था कि महर की नफी की सूरत में अगर निकाह नहीं होता तो महर से खामोशी की सूरत में भी निकाह नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महर से खामोशी की सूरत में निकाह हो जाएगा, वहां हमने कियास तर्क कर दिया क्योंकि वो नस से साबित हो रहा था कि महर भी मुकर्रर न किया हो फिर भी तुम औरतों को तलाक दे सकते हो। मालूम हुआ निकाह मुनाकिद हो चुका है। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वफी खिलाफ मालिक रहमहुल्ला, और इसमें इमाम मालिक रहमहुल्ला का इख्तिलाफ है। वो फरमाते हैं अगर महर की बाकायदा नफी की जाएगी तो निकाह ही नहीं होगा। दलील उनकी समझ में आ गई। हम जवाब देते हैं कि महर जो है वो निकाह का हुक्म है, हमने बयान कर दिया महर क्या है, निकाह का हुक्म है, और हुक्म अकद अकद के बाद आया करता है। ज्यादा से ज्यादा उस शख्स ने यह किया कि मैं महर नहीं दूंगा, उसने एक शर्त फासिद जिक्र कर दी, और शर्त फासिद से याद रखो निकाह फासिद नहीं होता। भाई ये बात मैं पहले भी बयान कर चुका, एक है बैअ और एक है निकाह। याद रखो बैअ में अगर आप कोई शर्त फासिद लगाएंगे, ऐसी शर्त लगाएंगे जो अक़द के मुक्तज़ा के खिलाफ है, तो इस सूरत में वो बैअ ही फासिद हो जाएगी। मसलन आप अपने साथी को एक गाड़ी फरोख्त करते हैं कि यह गाड़ी मैं आपको 10 लाख रुपए में फरोख्त करता हूं, लेकिन शर्त यह है 10 दिन तक मैं इस्तेमाल करूंगा इस गाड़ी को, फिर उसके बाद दूंगा। तो देखो ये आपने ऐसी शर्त लगा दी कि अकद इसका तकाजा नहीं कर रहा। अकद तो यह तकाजा करता है कि जैसे ही अकद हुआ अब मबीआ मुश्तरी के हवाले कर दो। तो जब भी ऐसी शर्त लगाई जाए जो अकद के मुक्तजा के खिलाफ हो तो बैअ फासिद हो जाती है। लेकिन अगर निकाह के अंदर शर्त फासिद लगा दी तो याद रखो निकाह सही हो जाएगा और वो शर्त फासिद है, उसका कोई एतबार नहीं। तफसील याद रखो निकाह में तीन किस्म की शर्तें हो सकती हैं। या तो वो ऐसी शर्त होगी जो मुक्तज़ा अकद के मुताबिक होगी, अकद भी उसका तकाजा कर रहा है, आप भी वही शर्त लगा रहे हैं। मसलन एक औरत एक आदमी से निकाह करती है और कहती है शर्त ये है तुम मुझे नफका भी दोगे, तुम मुझे महर भी दोगे। भाई अकद भी तो इसी का तकाजा कर रहा है कि खावन जो है वो नफका भी देता है बीवी को और महर भी देता है, तो लिहाजा ये तो उसने ऐसी शर्त लगाई जो मुक्तज़ा अकद के मुताबिक है, अकद भी इसका तकाजा कर रहा है, तो ये शर्त तो मुक्तज़ा अकद के मुताबिक है, इसे तो चाहे जिक्र करे या ना करे, दोनों सूरतों में नफका भी देना पड़ेगा और महर भी देना पड़ेगा, तो इससे कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसी शर्त लगाना निकाह में जो मुक्तज़ा अकद के मुताबिक, तो इससे कोई असर नहीं पड़ता। और अगर ऐसी शर्त लगाई जो मुक्तज़ा अकद के खिलाफ है, मसलन निकाह करते हुए खावन कहता है मैं तुम्हें महर नहीं दूंगा, नहीं भाई महर तो तुम्हें देना पड़ेगा भाई, तो ये ऐसी शर्त लगा रहा है जो मुक्तज़ा अकद के खिलाफ है। या इसी तरह निकाह करते हुए औरत खावन को कहती है कि मैं निकाह तुम्हारे साथ करती हूं लेकिन शर्त यह है तुम्हारे पास तलाक देने का कोई इख्तियार नहीं होगा, तुम मुझे तलाक जिंदगी भर नहीं दे सकोगे। तो ये तो मुक्तज़ा अकद के खिलाफ शर्त लगा रही है। निकाह तो तकाजा करता है कि खावन के पास तलाक का हक होना चाहिए भाई, लिहाजा जब निकाह के अंदर मुक्तज़ा अकद के खिलाफ कोई शर्त लगाई जाए तो वो शर्त फासिद है और निकाह सही हो जाएगा। बै के अंदर शर्त फासिद लगाते थे तो बै ही फासिद हो जाती थी, लेकिन निकाह के अंदर शर्त फासिद लगाएंगे तो निकाह फासिद नहीं होगा, निकाह ठीक हो जाएगा, शर्त फासिद हो जाएगी। और अगर ऐसी शर्त लगाई निकाह में जो मुक्तज़ा आकद के खिलाफ नहीं है, मसलन बीवी ने कहा मैं तुमसे निकाह करती हूं लेकिन शर्त यह है तुम हमेशा मुझे इसी शहर में रखोगे, किसी और शहर में लेकर नहीं जाओगे, तो अगर ऐसी शर्त लगा दी जो मुक्तज़ा आकद के खिलाफ नहीं है तो फिर याद रखो इसमें फुकहा फरमाते हैं कि इसको दयानतन पूरा करना जरूरी है, यानी ये उस बंदे और अल्लाह के दरमियान का मामला है, उसको यह शर्त पूरी करनी चाहिए। कजाअन उस पर यह लाजिम नहीं है, काजी उस पर यह हुक्म नहीं लगा सकता कि तुम्हें इसी शहर में रखना पड़ेगा, तो कजाअन यह शर्त लाजिम नहीं हुई लेकिन दयानतन क्या हो गई उस आदमी पर, लाजिम हो गई। जबकि बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि कजाअन भी उस पर अब यह लाजिम हो गए। बात समझ में आ गई। तो हासिल कलाम क्या, निकाह में कितनी किस्म की शर्तें हो सकती हैं, तीन किस्म की। या तो शर्त ऐसी होगी कि खुद आकद भी उसका तकाजा कर रहा है तो उसके जिक्र करने या ना करने से कोई असर नहीं पड़ता, या ऐसी शर्त जिक्र कर दी जो मुक्तज़ा आकद के खिलाफ है तो शर्त फासिद हो जाएगी और निकाह सही हो जाएगा, और अगर ऐसी शर्त जिक्र की जो मुक्तज़ा आकद के खिलाफ नहीं है तो वो उस पर दयानतन लाजिम है, कजाअन लाजिम नहीं है, जबकि बास कहते हैं कजाअन भी लाजिम है। तो हम जवाब दे रहे हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह को। इमाम मालिक रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे, अगर निकाह में बाकायदा महर की नफी की तो निकाह हो गई नहीं। हम कहते हैं कि निकाह में बाकायदा महर की नफी की तो यह शर्त फासिद लगा दी, और शर्त फासिद से निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता, निकाह हो जाएगा और वह शर्त फासिद है, उसका कोई एतबार नहीं है। और बाकी आपने इस महर को कियास किया था समन पर, कि बैअ के अंदर समन का जिक्र जरूरी है, अगर समन के न होने की शर्त लगाओगे तो बैअ ही नहीं होती, तो उसका भी हम जवाब देते हैं कि समन जो है वो तो बैअ का रुकन है भाई, समन क्या है, बैअ का रुकन है, बाय मबिया देता है तो मुश्तरी क्या देगा, समन देगा, तो समन तो बैअ का रुकन है, लिहाजा इसलिए उसका जिक्र जरूरी है। जबकि महर के बारे में हमने बता दिया कि महर यह निकाह का रुकन नहीं है, ये शरअन वाजिब है भाई, ये निकाह का हुक्म है, आकद के बाद वाजिब हो जाएगा अगर जिक्र न किया जाए। बात समझ में आ गई। ये माना है वफीही खिलाफ मालिक रहिमहुल्ला, और इसमें इमाम मालिक रहमहुल्ला का इख्तिलाफ है। व अकल्लुल महर अशरतु दराहिमा, जी याद रखो हमारे नजदीक कम से कम महर की मिकदार 10 दिरहम है, 10 दिरहम है, और ज्यादा की कोई हद नहीं, जितना भी ज्यादा महर रखना चाहे कोई रख सकता है, लेकिन हद से ज्यादा महर पसंदीदा नहीं है कि खावन के लिए अदायगी बोझ बन जाए। बात समझ में आ गई। लिहाजा ज्यादा महर भी पसंदीदा नहीं, तो बहरहाल ज्यादा की कोई हद नहीं है और कम से कम महर 10 दिरहम होना चाहिए, 10 दिरहम, इससे कम नहीं। और याद रखो ये दिरहम चांदी का होता है और एक दिरहम की मकदार है 3 माशे, 1 रत्ती और खुमुसे रत्ती, यानी रत्ती का 5वां हिस्सा। एक दिरहम कितना होता है, 3 माशे, 1 रत्ती और खुमुसे रत्ती। भाई तफसील याद रखो भाई, 8 रत्तियां हो तो ये 1 माशा बनता है, 8 रत्तियां हो तो ये 1 माशा बनता है, और 12 माशे हो तो ये 1 तोला बनता है, 12 माशे हो तो एक दिरहम, दिरहम चांदी का है और कितना वजन होता है, 3 माशे, 1 रत्ती और खुमुसे रत्ती, यानी रत्ती का 5वां हिस्सा, तो 10 दिरहम है। अब इसका हम हिसाब लगा लेते हैं कि ये तोलों में कितना बनता है, तो 10 दिरहम है, हर दिरहम में हमें 3 माशे मिल रहे हैं पूरे पूरे, तो 10 दिए 30, 30 माशे हो गए, और उसके बाद, उसके बाद फिर हर दिरहम में 1 रत्ती भी है और खुमुसे रत्ती भी है, तो 10 रत्तियां भी हमें पूरी मिल गई, ठीक है। और फिर हर दिरहम में रत्ती का 5वां हिस्सा है, तो 5 दिरहमों में जाके फिर एक पूरी रत्ती बन जाएगी, और 10 दिरहमों में 2 रत्तियां हो गई, तो 10 रत्तियां पहले थी और 2 ये रत्तियां हो गई, 12 रत्ती, यानी हमारे पास 30 माशे और 12 रत्ती हो गए, तवज्जो है। और 8 रत्तियां हो तो 1 माशा बनता है, आठ रत्ती हो तो एक, तो 12 रत्ती का कितने माशे बन गया, डेढ़ माशे, डेढ़ माशा। तो गोया 30 माशे पहले थे, डेढ़ माशा और हो गया, 31.5 माशे हमारे पास कुल बन गए। अब इसके हम तोले बना लेते हैं, तो हर तोले में 12 माशे होते हैं, तो 12 दूनी 24, 12 तीय 36, ये तो ज्यादा हो रहा है, तो 12 दूनी 24, दो तोले पूरे हो गए, और बाकी कितने बच गए, 31.5 में से 24 निकाल दो, 7.5, 7.5 माशे बाकी बच गए, दो तोले पूरे और 7.5 माशे, और 7.5 माशे में से 6 माशे हो तो ये आधा तोला बन गया, आधा तोला, तो ये 2.5 तोले हो गए और डेढ़ माशा, 2.5 तोले और डेढ़ माशा, डेढ़ माशा, तो यानी ये तकरीबन 2.75 तोले के करीब बन गया। पूरे 2.75 तोले तो नहीं, अगर कितने होते, अगर 3 माशे होते ना, फिर 2.75 बन, इस वक्त 2.5 तोले और डेढ़ माशा है, अगर 2.5 तोले और 3 माशे होते तो फिर 2.75 बन जाना था, 2.75 तोले, तो ये 2.75 तोले से कुछ कम है। और याद रखो, चांदी जो है उसकी कीमत बदलती रहती है, आजकल चांदी का फी तोला पाकिस्तान में तकरीबन 2500 का है, 2400-2500 की एक तोला चांदी है, तो ये बन गए तकरीबन 2.75 तोले के करीब लगा लें, ये कोई 7000 के करीब, 6.5 या 7000 के करीब रुपए बन जाते हैं, बात समझ में आ गई, तो ये अच्छी खासी रकम है। आजकल तो कुछ नहीं, आजकल तो बिजली के बिल आते हैं, गैस के बिल, पानी के बिल आते हैं, और हर चीज में हुकूमत ने टैक्स लगाए हैं, तो ये पता ही नहीं चलता, लेकिन कदीम जमाने में ये 10 दिरहम अच्छी खासी रकम होती थी, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह अकल महरी अशारतु दराहिमा, और कम से कम महर जो है वो 10 दिरहम है। वकाल शाफी रहिमहुल्लाहुमा यजूज अन यकून समनन फिल बैई यजूज अन यकून महरन लहा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते कि नहीं, औरत जितना मर्जी महर मुकरर करना चाहे कर सकती है, चाहे ज्यादा मुकरर करे, चाहे 10 दिरहम से भी कम, 5 दिरहम मुकरर कर ले, 2 दिरहम मुकरर कर ले, 1 दिरहम मुकरर कर ले, ये उसकी मर्जी है। वजह यह कि वो फरमाते हैं कि यह महर औरत का हक है, यह महर किसका हक है, औरत का हक है, तो जब आपका अपना हक है तो आप उसमें जैसे मर्जी कमी बेशी करें। आप एक चीज बेचना चाहते हैं तो आप चाहे 100 रुपए की बेचें, चाहे आप 10 रुपए की बेचें, कोई आप पर एतराज नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी चीज है, तवज्जो है, गाड़ी आपकी है, 10 लाख की आप बेचना चाहें, और आप चाहें तो किसी को 10,000 में बेच दें, साहिब हक की मर्जी होती है। तो यहां पर भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं यह महर औरत का हक है, जो चीज बै के अंदर समन बनने की सलाहियत रखती है उसको महर मुकरर किया जा सकता है, बात समझ में आ गई। और 5 दिरहम भी क्या है, समन बन सकते हैं किसी बैह में, लिहाजा 5 दिरहम भी हो सकता है, 1 दिरहम भी समन बन सकता है बैह के अंदर, तो 1 दिरहम भी औरत इस पर राजी हो जाए या इससे भी कम पर राजी हो। तो बहरहाल जो चीज बैह में समन बन सकती है उनके नजदीक वो निकाह में महर भी बन सकती है। तो कहते हैं वकाल शाफी रहमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं मा यजूजु अन यकूना समनन फिल बैई, कि वो चीज के जो बै के अंदर जिसका समन बनना जायज हो, यजूजु अन यकूना महरन लहा, वो उस औरत के लिए महर भी बन सकती है। लिअन्नहु हक्कुहा, इसलिए क्योंकि महर जो है उस औरत का हक है। फयकून तकदीर इलैहा, तो उसको मुकरर करना उसी के सुपुर्द है। याद रखो, कद्दरा युकद्दिरु तकदीर, इसका माना अंदाजा करना भी और इसका माना मुकर्रर करना भी, तो मौका महल के मुताबिक जहां जो माना मुनासिब बनता हो वो तर्जमा उसका करेंगे। तो यहां तकदीर का क्या माना कर लेंगे, मुकर्रर करना। फयकूनु तकदीरु इलैहा, तो इस महर को मुकरर करना इलैहा, उस औरत के सुपुर्द है, वो जितना मुकरर करना चाहे, चाहे 10 दिरहम से ज्यादा, चाहे 10 दिरहम से कम मुकरर कर सकती है वो। वलाना, और हमारी दलील जो है हम क्या कहते हैं 10 दिरहम से महर कम नहीं, वलाना हमारी दलील जो है कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहि सलाम का ये कौल है, वला महर अकल्लु मिन आशरतिन, कि कोई महर 10 से कम नहीं है, यानी 10 दिरहम से महर कम नहीं है। वली अन्नहु हक्कु शरई वजूबन, और नीज इसलिए क्योंकि ये महर जो है ये शरीयत का हक है, वजूबन वजूब के एतबार से, ये महर किसने वाजिब करार दिया है, शरीयत ने वाजिब करार दिया है, तो वजूब के एतबार से ये शरीयत का हक है, इजहारन लिशरफिल महल्ली, उस महल के मुअज्जज होने के इजहार के लिए शरीयत ने इसको वाजिब किया है। फयुकद्दरु बिमा लहू खतरुन, लिहाजा इसको मुकर्रर किया जाएगा बिमा ऐसी चीज के साथ, ये यूं कहें या इसका अंदाजा लगाया जाएगा बिमा ऐसी चीज के साथ, लहू खतरुन जिसकी कोई अहमियत हो, जिसकी कोई हैसियत और वुकअत हो, जिसको कुछ शुमार भी किया जा, जिसको कुछ माल शुमार किया जाता है, और वह 10 दिरहम है। भाई भाई साहिब हिदाया ने नकली दलील भी जिक्र कर दी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि 10 दिरहम से कम महर नहीं हो सकता, और नीज अब अकली दलील भी जिक्र फरमा रहे हैं कि कियास भी यही तकाजा करता है कि महर जो है वो कम अज कम इतना माल हो जिसकी कोई हैसियत हो, क्योंकि ये शरीयत ने वाजिब किया है, और किस लिए वाजिब किया है, उस महल के मुअज्जज होने के इजहार के लिए, कि वो महल इतना महीन और हकीर नहीं है कि बगैर माल के ही तुम्हारे लिए हलाल हो जाए, तुम्हें कुछ माल खर्च करना पड़ेगा, तो लिहाजा शरीयत ने उस महल के मुअज्जज होने के इजहार के लिए माल को वाजिब किया है, तो माल इतना होना चाहिए जिसकी लोगों के नजदीक कुछ हैसियत और अहमियत भी हो, और वो 10 दिरहम है। मैंने बताया कदीम जमाने में 10 दिरहम अच्छी खासी रकम होती थी भाई। तो कहते हैं वली अन्नहु, अब ये अकली दलील जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वली अन्नहु हक्कु शरई वजूबन इजहारन लिशरफिल महल्ली, और इसलिए क्योंकि ये जो महर है ये शरीयत का हक है वजूब के एतबार से, इजहारन लिशरफिल महल्ली उस महल के मुअज्जज होने के इजहार के लिए, फयुकद्दरु बिमा लहू खतरुन लिहाजा इसका अंदाजा लगाया जाएगा इतनी मिकदार के साथ जिसकी कोई अहमियत हो, वहुवल अशरतु और वो 10 दिरहम है भाई। इस्तिदलालम बिनिसाब सरिकती, इस्तिदलाल करते हुए चोरी के निसाब से, दलील पकड़ते हुए चोरी के निसाब से, याद रखो जब कोई शख्स चोरी करता है तो उसका हाथ काटा जाएगा, लेकिन हर चोरी में हाथ नहीं काटा जाएगा, बल्कि कम से कम इतना माल चोरी करे जिसकी कोई अहमियत हो भाई, और वो 10 दिरहम है भाई। 10 दिरहम या इससे ज्यादा की कोई चोरी करेगा तो शरअन उसका हाथ काटा जाएगा, और अगर 10 दिरहम से कम चोरी करता है तो फिर हाथ नहीं काटा जाएगा। मालूम हुआ एक इंसानी उज्व की कम से कम कीमत 10 दिरहम है। कम से कम कीमत कितनी है? 10 दिरहम है। 10 दिरहम की चोरी होगी तो हाथ काटा जाएगा, इससे कम में हाथ नहीं काटा जाएगा। तो मालूम हुआ इंसानी उज्व की कम से कम कीमत 10 दिरहम है, और बुज़ा वो भी एक इंसानी उज्व है, लिहाजा उसके भी हलाल होने के लिए कम से कम कितना माल आएगा? 10 दिरहम जरूर आएगा। बात समझ में आ गई? तो यह माना है वहुवल अशरतु, तो और वो मिकदार जो है 10 है। इस्तिदलालम बि निसाब सरिकती, चोरी के निसाब से इस्तिदलाल करते हुए, वलौ समा अकल्ल मिन अशरतिन फलहल अशरतु इंदना, वकाल ज़ुफ़र रहिमहुल्लाहु महरुल मिस्ल लिअन्न तस्मियत मा ला यस्लुहु महरन कअदमिही। सूरत मसला ये, एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया और महर 10 दिरहम से भी कम मुकर्रर कर दिया, मसलन 5 दिरहम मुकर्रर कर दिया कि मैं तुमसे निकाह करता हूं लेकिन कितना महर दूंगा? 5 दिरहम महर दूंगा। तो हमारे नजदीक 5 नहीं, उसको 10 ही देने पड़ेंगे, क्योंकि 10 दिरहम से कम महर नहीं हो सकता। जबकि इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं कि नहीं, यहां महरे मिसल आ जाएगा, यानी इस औरत के खानदान में इस जैसी औरतों को जो महर होता है वो इसको देना पड़ेगा। तो कहते हैं वला उसम्मा अकल्ला मिन आशारतीन, और अगर महर को जिक्र किया 10 से कम, फला हल आशारतु इंदाना, तो उस औरत के लिए 10 दिरहम ही होंगे हमारे नजदीक, हमारे तीनों इम्मा के नजदीक 10 दिरहम देने पड़ेंगे। वकाल जुफर रहमहुल्लाह महरुल मिसली, इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं उस औरत के लिए महर मिसल होगा, लिअन्न तस्मियत मा ला यस्लुहु महरन का अदमी ही। इमाम जुफर की दलील जिक्र फरमा रहे हैं, इमाम जुफर फरमाते हैं कि ऐसी चीज को महर जिक्र करना जो महर बनने की सलाहियत ही नहीं रखती, ये इसी तरह है जैसे महर को जिक्र ही नहीं किया गया। इस शख्स ने 5 दिरहम को महर जिक्र किया है और 5 दिरहम तो महर बनने की सलाहियत ही नहीं रखते, तो ये इसी तरह हो गया जैसे महर को उसने जिक्र ही नहीं किया। और जब महर को जिक्र न किया जाए तो महरे मिसल आया करता है, लिहाजा यहां भी क्या आ जाएगा, महरे मिसल आ जाएगा, वो इस शख्स को देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। मसलन देखो, ऐसी चीज जिक्र की जैसे खिंजीर और शराब, याद रखो मुसलमान न खिंजीर और शराब का खुद मालिक बन सकता है और न दूसरे को मालिक बना सकता है, यानी मुसलमान के लिए शराब और खिंजीर का न तमल्लुक जायज है और ना तमलीक जायज है। शराब और खिंजीर किसी और की मिल्कियत में थी और मुसलमान की मिल्कियत में दाखिल हो जाए, नहीं भाई, मुसलमान के लिए शराब या खिंजीर का तमल्लुक जायज ही नहीं है, यानी उसकी मिल्कियत में दाखिल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ये शराब या खिंजीर उसकी मिल्कियत में पहले से दाखिल हैं तो फिर ये किसी और को मालिक बना दे, नहीं भाई, यहां तमलीक भी नहीं कर सकता, ना तमल्लुक कर सकता है और ना तमलीक। मसलन देखो, पहले से ही मालिक हो कि इस मुसलमान के पास अंगूर का रस था, मुसलमान के पास अंगूर का रस था और वो पड़े पड़े शराब में तब्दील हो गया, तो अब देखो ये पहले से इसका मालिक है मुसलमान, ये नहीं कि अब इसकी मिल्कियत में शराब दाखिल हुई है, इस अंगूर के रस का वो पहले से ही मालिक था, अब मुसलमान इसको बेचना चाहता है, नहीं भाई, शराब को मुसलमान ना बेच सकता है ना खरीद सकता है, ना तमलीक कर सकता है ना तमल्लुक कर सकता है, लिहाजा इसको या तो वो सिरके में बदलना पड़ेगा, उसको वो सिरके में बदल दे, धूप में रखना पड़ेगा या नमक डालना पड़ेगा तो वो सिरका बन जाएगा, फिर उसका इस्तेमाल इसके लिए जायज हो जाएगा और फिर इसका बेचना भी इसके लिए जायज हो जाएगा। या दूसरी सूरत ले लें, खिंजीर का मालिक है पहले से ही एक मुसलमान, मसलन एक शख्स काफिर था, उसके बाद बहुत सारे खिंजीर थे, वो इनका मालिक है, अब वो मुसलमान बन गया, अब देखो खिंजीर उसकी मिल्कियत में मौजूद हैं, तो ये किसी दूसरे को मालिक बनाना चाहता है, बेचना चाहता है, नहीं भाई, तमलीक नहीं कर सकता। जाब्ता समझ में आया, मुसलमान के लिए शराब और खिंजीर में इतना तमल्लुक जायज है और ना तमलीक। अब सूरत है मसला ये, दलील चल रही है इमाम जुफर रहमतुल्लाह की। इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर महर में ऐसी चीज को जिक्र किया जाए जो महर बनने की सलाहियत नहीं रखती तो वहां महर मिसल आता है। चुनाचे फरमाते हैं अगर एक शख्स, एक मुसलमान ने एक औरत से निकाह किया और महर के अंदर शराब या खिंजीर जिक्र कर दिए गए, और ये शराब और खिंजीर ये तो महर बनने की सलाहियत ही नहीं रखते, तो वहां बिल इत्तेफाक हमारे सब अइमा के नजदीक महर मिसल आता है। शराब या खिंजीर में महर बनने की सलाहियत ही नहीं तो वहां फिर क्या आएगा, महर मिसल। तो वो फरमाते हैं इमाम जुफर के, देखा जो चीज महर बनने की सलाहियत ना रखती हो अगर उसको महर बनाएंगे तो वहां महर मिसल आता है। तो यहां पर भी इसने 5 दिरहम जिक्र किए हैं और 5 दिरहम तो महर बनने की सलाहियत नहीं रखते, लिहाजा यहां भी क्या आ जाएगा, महर मिसल आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जबकि हमारे अइमा क्या फरमाते हैं कि ये 10 दिरहम पूरे कर दिए जाएंगे, यहां 10 दिरहम देने पड़ेंगे उस आदमी को, उसने 5 जिक्र किए हैं लेकिन 10 से कम तो महर नहीं हो सकता, लिहाजा इसको पूरा कर दिया जाएगा, 10 दिरहम इस आदमी को देने पड़ेंगे। जबकि इमाम जुफर क्या फरमाते हैं, महरे मिसल देना पड़ेगा। इख्तिलाफ समझ में आ गया। आगे देखिए, वलाना, अब हमारी दलील आ गई वलाना, और हमारी दलील यह है कि नफसाद हादी तस्मियत लि हक शरई। भाई इधर देखिए, मैंने बताया था कि जो महर है ये शरीयत ने वाजिब किया है। अब याद रखो ये जो महर है, महर ये हक शरा भी है और ये औरत का भी हक है। ये वाजिब किसने करार दिया, शरीयत ने, और नीस कम से कम कितना होना चाहिए, 10 दिरहम। तो देखो ये शरीयत का भी हक है और ये औरत का भी हक है, वसूल किसने करना है? औरत ने, और इसकी मिकदार थोड़ी या ज्यादा जितना भी रखना चाहे औरत रख सकती है, हां 10 दिरहम से कम नहीं रख सकती। तो ये जो महर है ये हक शरा भी है और औरत का भी हक है। अब यहां पर इस शख्स ने 5 दिरहम में निकाह किया है, लिहाजा ऐसी सूरत इख्तियार की जाएगी कि दोनों का हक अदा हो जाए, शरीयत का हक भी अदा हो जाए, औरत का हक भी अदा हो जाए, और उसकी यह सूरत है कि इस महर को बढ़ाकर 10 तक पहुंचा दिया जाए। जब 10 दिरहम हो जाएगा शरीयत का हक भी अदा हो गया, शरीयत भी क्या कहती है कम से कम महर कितना होना चाहिए 10 दिरहम, तो शरीयत का हक भी अदा हो गया और औरत का हक भी अदा हो गया, क्योंकि वह औरत जब 5 दिरहम पर राजी थी तो 10 पर तो वह बतरीके औला राजी होगी। भाई बात समझ में आ गई। वलना हमारी दलील यह है कि अन्ना फसाद हादिही तस्मियत इले हक शरई, कि इस तस्मिया का फासिद होना शरीयत के हक की वजह से था। सम्मा युसम्मी तस्मिया का माना है जिक्र करना, या इसी का तर्जमा कर लें मुकर्रर करना। इन्होंने 5 दिरहम जिक्र किए थे, या यूं कहें इन्होंने 5 दिरहम मुकर्रर किए थे, तो ये तस्मिया बार बार आगे लफ्ज आएगा तो हम इसका तर्जमा मुकर्रर करने के कर लेंगे। बात समझ में आ गई। वलाना हमारी दलील यह है कि न फसाद हादिही तस्मियत इले हक शरई, के इस मुकर्रर करने का फासिद होना जो था ले हक शरई, किस वजह से था? शरीयत के हक की वजह से था, क्योंकि 10 दिरहम से कम जिक्र किया था इन्होंने। वकद सारा मकजियन बिल आशारती, और तहकीक ये हक इशारा अदा हो जाएगा 10 के जरिए, अगर इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाए 10, तो इससे शरीयत का हक भी अदा हो जाएगा। फअम्मा मा यरजू इला हक्किहा, और बाकी वो जो इस औरत के हक की तरफ जो चीज लौटती है, फकद रजियत बिल आशारती, तो तहकीक वो 10 पर भी राजी होगी वो औरत। ले रिजाहा बिमा दूनहा, इसलिए क्योंकि वो तो 10 से कम पर भी राजी थी, तो दोनों का हक अदा हो गया। वला मुअतबरा बिअदमी तस्मियती, हां इमाम जुफर रहमतुल्लाह ने इसको किस पर कयास किया था? आदम तस्मिया पर। उन्होंने फरमाया था जब ऐसी चीज को महर जिक्र किया जाए जिसमें महर बनने की सलाहियत ही नहीं है, तो ये इसी तरह है जैसे महर को जिक्र ही नहीं किया, और जब महर को जिक्र ही ना किया जाए तो महर मिसल आता है, तो इन चीजों में भी महर मिसल आ जाएगा। तो उसका भी जवाब दे रहे हैं कि नहीं भाई, आप इस जिक्र को आदम जिक्र पर कयास नहीं कर सकते, क्योंकि एक जैसी चीजों को एक दूसरे पर कयास किया जाता है और ये दोनों एक जैसे नहीं। तस्मिया और चीज है, आदम तस्मिया और चीज है, तो आप इस तस्मिया को आदम तस्मिया पर कयास नहीं कर सकते। वजह आगे इसकी बतलाएंगे। वजह यह है क्योंकि बाज औकात औरत का निकाह किया जा रहा है और वो रिश्ता अच्छा है, औरत भी वहां निकाह चाहती है, अब निकाह के अंदर महर को जिक्र न किया जाए फिर भी औरत राजी हो जाती है, गोया औरत अपनी सखावत का इजहार कर रही है कि मैं इतनी मुअज्जज और मोहतरम हूं और मेरी सखावत का यह हाल है कि मैं अपने आप को बगैर किसी इवज के अपने खावंद के सुपुर्द कर रही हूं। भाई मेरे मुकाबले में रुपया और पैसा क्या चीज है? रुपये या पैसे की कोई भी मिकदार मेरी कीमत नहीं हो सकती। तो आदम तस्मिया की सूरत में भी वो निकाह पर राजी हो जाएगी, लेकिन अगर महर को थोड़ा जिक्र किया जाए तो इसमें तो वो एहानत महसूस करेगी कि इतना थोड़ा सा महर भाई, तो उस पर वो कभी राजी नहीं होगी। तो तस्मिया में थोड़ा महर हो और आदम तस्मिया में महर सिरे से जिक्र ही ना हो, तो आपने इस तस्मिया को, इस कलील माल के तस्मिया को किस पर कयास किया था? आदम तस्मिया पर। हमने बता दिया कि नहीं, दोनों में फर्क है। आदम तस्मिया में तो औरत जो है अपने मुअज्जज होने और अपनी सखावत का इजहार करते हुए राजी हो जाएगी, लेकिन थोड़े माल पर वो राजी नहीं होगी, तो दोनों में फर्क है। लिहाजा आप तस्मिया को आदम तस्मिया पर कयास नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वला मुअतबरा बि आदम तस्मियती, और कोई एतबार नहीं है आदम तस्मिया का, जिक्र न करने का कोई एतबार नहीं है। लिअन्नहा कद तर्ज़ा बि तमलीक मिन गैर इवज़िन, इसलिए क्योंकि कभी कभार औरत राजी हो जाती है बि तमलीक मालिक बनाने पर, यानी उस शख्स उस खावन को अपना मालिक बना रही है, मिन गैर इवज़िन बगैर किसी इवज़ के, تکرمن، تکرمن بھائی تکرم کا مادہ ہے کاف را میم، کاف را میم یعنی کرم، اور کرم کہتے ہیں سخاوت کو، تو تکرم باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل کے اندر تکلف والا معنی ہوتا ہے، یعنی بتکلف کوئی کام کرنا، تو کرم کا کیا معنی تھا؟ سخاوت، تو تکرم کا معنی ہوگا بتکلف سخاوت کرنا، یعنی بناوٹی سخاوت کرنا، یعنی اپنی سخاوت کا اظہار کرنا، کیا کرنا؟ اب تو عورت بھی دیکھو بغیر مہر کو ذکر کیے اس کا نکاح کروایا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس نکاح پر خوش ہے، تو وہ بھی اپنے معزز ہونے اور اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہوئے اسی طرح راضی ہے کہ میں تو اتنی معزز و مکرم ہوں اور میری سخاوت اور فیاضی کا تو یہ عالم ہے کہ میں بغیر کسی عوض کے ہی اپنے خاوند کو اپنا مالک بنا رہی ہوں. لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرما، اس لیے کیونکہ کبھی کبھار عورت راضی ہو جاتی ہے بالتمليك من غير عوض مالک بنانے پر بغیر کسی عوض کے، تکرما اپنے تکرم اپنے سخاوت اور فیاضی کا اظہار کرنے کے لیے. ولا ترضى فيه بالعوض اليسير، اور وہ اس میں تھوڑے سے عوض پر راضی نہیں ہوگی. آگے دیکھیے، ولو طلقها قبل الدخول بها تجب خمسة عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله وعنده تجب المتعة كما اذا لم يسم شيئا. یاد رکھو، ایک خاوند بیوی کو طلاق دیتا ہے، اس میں پھر چار صورتیں بنتی ہیں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یہ بار بار آگے ان چیزوں کا ذکر ہوتا رہے گا. جب بھی کوئی خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے وہاں چار صورتیں بنتی ہیں، یا تو جب نکاح کیا تھا مہر مقرر کیا ہوگا یا مہر مقرر نہیں کیا ہوگا. مہر مقرر نہ کریں تو پھر مہر مثل آ جایا کرتا ہے، مہر تو ضرور آئے گا. توجہ ہے؟ تو خاوند نے بیوی کو طلاق دی ہے، یہاں چار صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جب ان کا نکاح ہوا تھا مہر کو ذکر کیا گیا تھا یا مہر کو ذکر نہیں کیا گیا، مہر کو مقرر نہیں کیا گیا. اور پھر ان دونوں میں سے ہر ایک میں دو دو صورتیں ہیں، کہ یہ جو طلاق دے رہا ہے یہ رخصتی سے پہلے طلاق دے گا، یعنی صحبت سے پہلے ہی طلاق دے رہا ہے، یا صحبت کے بعد طلاق دے رہا ہوگا. تو کل کتنی صورتیں؟ چار، کہ جب نکاح کیا تھا مہر مقرر کیا تھا یا مہر مقرر نہیں کیا تھا، پھر دونوں کے اندر دو دو صورتیں ہیں. مثلا مہر مقرر نہیں کیا، مہر مقرر نہیں کیا تو اب اس کو طلاق دے رہا ہے، تو یہ صحبت سے پہلے طلاق دے رہا ہے یا صحبت کے بعد طلاق دے رہا ہے، توجہ ہے. اور دوسری صورت، اگر مہر مقرر کیا تھا تو وہاں پر بھی صحبت سے پہلے طلاق دے گا یا صحبت کے بعد طلاق دے گا. آپ اتنا تو آپ کو پتا چل گیا کہ نکاح کے اندر مہر ضرور آئے گا. اگر کوئی مہر مقرر کیا ہے وہی دینا پڑتا ہے، اور اگر مقرر نہیں کیا تو پھر مہر مثل آ جایا کرتا ہے. پھر یاد رکھو، اگر مہر مقرر کیا ہے تو پھر صحبت سے پہلے طلاق دے گا یا صحبت کے بعد. اگر صحبت سے پہلے طلاق دیتا ہے اور مہر مقرر کیا تھا تو پھر نصف مہر دینا پڑے گا، اور اگر صحبت کے بعد طلاق دیتا ہے پھر پورا مہر دینا پڑے گا. توجہ ہے؟ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور مہر مقرر کیا تھا، مثلا 2,00,000 روپے مہر مقرر کیا تھا. بعد میں ایک شخص اس عورت کو طلاق دیتا ہے، اگر یہ اس صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے رہا ہے تو مقررہ مہر کا نصف یعنی 1,00,000 اس کو دینا پڑے گا، اور اگر صحبت کر چکا ہے اور اب طلاق دیتا ہے تو پھر اس کو پورا مہر یعنی 2,00,000 دینے پڑیں گے. اور دوسری صورت، اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا اور خاوند بیوی کو طلاق دیتا ہے تو پھر وہاں بھی وہی دو صورتیں، یا صحبت کی ہوگی یا صحبت نہیں کی. اگر صحبت کر لی ہے تو پھر مہر مثل دینا پڑے گا، اور اگر صحبت نہیں کی، مہر بھی مقرر نہیں تھا اور صحبت سے پہلے طلاق دیتا ہے، تو پھر یاد رکھو اس صورت میں متعہ دینا پڑے گا. کیا دینا پڑے گا؟ متعہ دینا پڑے گا. یہ آگے ذکر آنے والا ہے بھائی، صاحب ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے. متعہ تین کپڑوں کا نام ہے، تین کپڑے دینے پڑیں گے. جیسے عربوں کے ہاں تین کپڑے کیا تھے، ان کے ہاں ایک لمبی قمیص ہوتی ہے، دوپٹہ ہوتا ہے اور ایک بڑی چادر، ये तीन कपड़े देने पड़ेंगे, और हमारे यहां यूं कहो चार कपड़े देने पड़ेंगे, एक सूट यानी शलवार कमीज और दुपट्टा, और उसके साथ एक बड़ी चादर देनी पड़ेगी। तो ये मुता देना पड़ेगा किस औरत को, जिसको सोहबत से पहले तलाक दे रहा है और महर मुकर्रर नहीं किया था। फिर दोहरा लें भाई, ये बार बार आएगा, एक शख्स एक औरत से निकाह करता है तो वो महर मुकर्रर करेगा निकाह में या महर मुकर्रर नहीं करेगा। अगर महर मुकर्रर करता है फिर तलाक देता है, तो अगर सोहबत से पहले तलाक दी तो निस्फ महर देना पड़ेगा जो मुकर्रर किया था, और अगर सोहबत के बाद तलाक दी तो पूरा महर देना पड़ेगा। और अगर महर मुकर्रर नहीं किया था तो फिर अगर सोहबत के बाद तलाक देता है तो महरे मिसल देना पड़ेगा, और अगर सोहबत से पहले तलाक देता है तो वहां मुता देना पड़ेगा, यानी तीन कपड़े। बात समझ में आ गई? तो अब देखो यही मसाला चल रहा है, एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया है और 10 दिरहम से कम महर मुकरर किया था। तवज्जो है, एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया है और 10 दिरहम से कम महर मुकरर किया है, तो हमारे तीनों इमाम क्या फरमाते हैं कि महर बढ़ाकर 10 दिरहम कर दिया जाएगा। इमाम जुफर फरमाते हैं नहीं, महर मिसल वहां पर आ जाएगा। अब इस औरत को सोहबत से पहले यह शख्स अगर तलाक दे देता है, सोहबत से पहले तलाक दे देता है, तो हमारे तीनों इमाम फरमाते हैं इस सूरत में वो जो 10 दिरहम थे उसका निसफ यानी 5 दिरहम देने पड़ेंगे। हमारे तीनों इमाम क्या फरमाते हैं, अगर सोहबत से पहले इस औरत को तलाक देता है तो कितने देने पड़ेंगे, 5 दिरहम। यानी महर तो असल में 10 से भी कम रखा था, लेकिन फिर हमने बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 10, क्योंकि 10 से कम तो महर नहीं हो सकता, तो महर 10 दिरहम हो चुका है। अब इस औरत को सोहबत से पहले वो तलाक देता है तो उसी महर का निसफ हो जाएगा, और वो कितना है, 5 दिरहम देने पड़ेंगे। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, मुता देना पड़ेगा, यानी वो तीन कपड़े देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके नजदीक इस औरत में महर 10 दिरहम नहीं आया उनके नजदीक, बल्कि महरे मिसल आया था, और जहां महरे मिसल आता है वहां पर अगर तलाक दी जाए सोहबत से पहले तो मुता देना पड़ता है। वहां अभी बात हुई थी कि महर मुकरर नहीं किया तो फिर क्या आएगा, महरे मिसल, लेकिन अगर सोहबत से पहले तलाक दे दी तो फिर मुता देना पड़ता है इस औरत को। तो इमाम जुफर फरमाते हैं यहां भी इस औरत को मुता देना पड़ेगा, सिर्फ तीन कपड़े देने पड़ेंगे, मुता देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? देखिए भाई कहते हैं वलौ तल्लकहा कब्ल दुखूल बिहा, और अगर इसी शख्स ने तलाक दे दी इस औरत को कब्ल दुखूल बिहा इससे सोहबत करने से पहले, तजिबु खमसतुन इंदा उलमा इन सलासती रहिमहुमुल्लाह, तो 5 दिरहम वाजिब होंगे हमारे तीनों उलमा तीनों फुकाहा के नजदीक, व इंदहु तजिबुल मुतातु और इमाम जुफर रहमतुल्लाह के नजदीक मुता वाजिब होगा, कमा इदा लम युसम्मी शैअन, जैसे कि खामन ने कोई चीज जिक्र न की हो, यानी कोई महर जब जिक्र न करे और सोहबत से पहले तलाक दे तो वहां मुता आता है, तो यहां पर भी मुता ही आएगा। बात समझ भी आ रही है कि नहीं? وَمَنْ سَمَّى مَهْرًا عَشَرَةً فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا, याद रखो महर जितना मुकरर किया जाए और वो खावन सोहबत कर ले तो वो महर पक्का हो गया, अब वो पूरा महर देना पड़ेगा। सोहबत से पहले अगर तलाक देगा तो निसफ महर देना पड़ेगा, लेकिन अगर सोहबत कर ली तो फिर पूरा महर। इसी तरह अगर खावंद का इंतकाल हो गया तो भी खावंद के माल में से पूरा महर औरत को दिलाया जाएगा। तो कहते हैं वह मन सम्मा महरन आशरतन फमाजादा, और जिसने महर मुकरर किया 10 दिरहम, फमाजादा या इससे ज्यादा, 10 से ज्यादा महर मुकरर किया, फअलैहि मुसम्मा इन दखला बिहा, तो उस शख्स पर पूरा मुसम्मा हो गया, यानी जिसको जिक्र किया था वो मुकर्ररा महर उस खावन पर वाजिब होगा, इन दखला बिहा अगर खावन ने उस बीवी से सोहबत कर ली, औ माता अनहा या उसको छोड़कर वो मरा, माता का सिला अन आ जाए तो इसका माना है छोड़कर मरना। माता जैदुन अनिमरा अतिन, जैद बीवी को छोड़कर मरा, यानी जैद का इंतकाल हो गया और बीवी जिंदा है, या माता ज़ैदुन अन वलदिन, ज़ैद जो है औलाद को छोड़कर मरा, माता का सिला अन आए तो इसका माना है छोड़कर मरना, तो कहते हैं औ माता अनहा, या खावन बीवी को छोड़कर मरा तो बीवी को पूरा महर देना पड़ेगा। तवज्जो है भाई, याद रखो एक शख्स है उसने एक औरत से निकाह किया और मसलन 1 लाख महर मुकरर किया, तो जब इस औरत से ये सोहबत कर लेगा तो अब ये 1 लाख पक्का हो गया, अब ये महर इसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी सोहबत भी नहीं की, सोहबत से पहले ही खावन का इंतकाल हो गया, तो भी खावन के माल में से पूरा 1 लाख महर उस औरत को दिलाया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो औरत को महर अलग देंगे और विरासत में बाकी फिर माल जो बचेगा उसमें विरासत में उसका हिस्सा अलग होगा। ये तो गोया खावन के जिम्मे उसका कर्ज था भाई, तो ये कर्ज पूरा माल पूरा महर औरत को दिलाया जाएगा। तवज्जो है, फिर देखिए कहते हैं वमन सम्मा महरन आशरतन फमा ज्यादा, और जिसने 10 दिरहम या ज्यादा महर मुकरर किया, फालेहिल मुसम्मा इन दखला बिहा, तो खावन पर वो मुकररा महर वाजिब हो जाएगा, इन दखला बिहा अगर उसने उस औरत से सोहबत कर ली, और मातान हा या खावन उसको छोड़कर मरा, लिया नहु बि दुखूल यतहक्कु तस्लीम उल मुबदली व बिही यतअक्कदुल बदल। कहते हैं देखो जब खावन ने सोहबत कर ली तो अब तो बदल देना पड़ेगा। तो अब बदल भाई देखो, निकाह होता है, निकाह के अंदर खावन औरत से नफा उठाने का मालिक बन जाता है, वो उसे सोहबत कर सकता है, नफा उठा सकता है। तो जब इसने सोहबत कर ली तो इसने तो मुबदल वसूल कर लिया, यानी इवज वसूल कर लिया, जब इवज वसूल कर लिया तो अब बदल यानी महर इसको पूरा देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये महर बदल है किस चीज का? उस औरत से सोहबत का, यानी उस औरत से फायदा उठाने का ये बदल है, और फायदा ये उठा चुका है, इसने सोहबत कर ली है, तो अब इसको बदल यानी इवज पूरा देना पड़ेगा। कहते हैं लिअन्नहु बिद्दुखूली यतहक्कु तस्लीमुल मुबदली, इसलिए क्योंकि सोहबत करने से यतहक्कु पाया गया तस्लीमुल मुबदली, मुबदल का सुपुर्द करना, मुबदल वो औरत ने अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया, तो मुबदल का सुपुर्द करना पाया गया, वह बिही यतअक्कदुल बदलु, और इससे बदल जो है वो पक्का हो जाता है, अब बदल देना पड़ेगा, वह बिल मौत यंतही निकाहु निहायतहु। याद रखो, याद रखो, मौत की वजह से निकाह अपनी इंतहा को पहुंच जाता है, मौत की वजह से आकद अपनी इंतहा को पहुंच गया, अपने इख्तिताम को पहुंच गया, अब इसके टूटने की कोई सूरत नहीं, अपनी इंतहा को पहुंचकर आकद खत्म हो गया। तवज्जो है, एक है खत्म होना, एक है आकद का टूट जाना, दोनों में फर्क है। तलाक देगा तो वो आकद टूट जाता है, लेकिन जब मौत आई तो टूटा नहीं, बल्कि आकद अपने इख्तिताम को पहुंच गया, यानी ये आकद हुआ ही इतनी देर के लिए था भाई, और ये अपने इख्तिताम तक पहुंच गया, जब इख्तिताम तक पहुंच गया तो इसके सारे अहकाम अब पक्के हो गए, यानी अब महर भी पूरा देना पड़ेगा, इद्दत का नफका भी देना पड़ेगा, और वरासत वगैरह भी अब जारी होगी, अब टूटने की कोई सूरत नहीं, यानी इख्तिताम तक पहुंचकर खत्म हो गया है। तो तलाक दें तब आकद टूट जाता है, और मौत आए तो आकद अपनी इख्तिताम तक और इंतहा तक पहुंच जाता है। वबिल मौती यंतहिन निकाह निहायतहु, और मौत की वजह से निकाह अपनी इंतहा को पहुंच जाता है, वशय उब इंतहा इही यतकर्ररु व यतअक्कदु, और कोई चीज जो है अपनी इंतहा की वजह से, अपने इख्तिताम की वजह से, यतकर्ररु व यतअक्कदु, वो साबित हो जाती है और पुख्ता हो जाती है। तो ये निकाह भी क्या हुआ, अब पक्का हो गया। तो कहते हैं वह शय उब इंतहा इही यतकर्ररु व यतअक्कदु, और शय जो है अपने इंतहा की वजह से, अपने इख्तिताम की वजह से, यतकर्ररु साबित हो जाती है, व यतअक्कदु और पक्की हो जाती है, फयतकर्ररु भी जमीई मवाजिबी ही, तो ये निकाह भी साबित हो जाएगा अपने तमाम मुजबात के साथ, अपने तमाम अहकाम के साथ, अब ये साबित हो जाएगा, ये अपनी इंतहा को पहुंच गया, अब इसके सारे अहकाम साबित हो जाएंगे, यानी वो महर जो था वो भी अब देना पड़ेगा, इद्दत का जो नफका है वो भी देना पड़ेगा, और वरासत भी जारी होगी, अब इन चीजों से महरूम करने की कोई सूरत नहीं है भाई। आगे देखिए, व इन तल्लकहा कब्ल दुखूल वल खलवती फलहा निस्फुल मुसम्मा लिकौलिही तआला व इन तल्लक्तुमूहुन्न मिन कब्ल अन तमस्सूहुन्नल आया। अब ये वही बात जिक्र करने लगे हैं, मैंने आपको क्या बतलाया, अगर महर मुकर्रर नहीं किया, महर मुकर्रर नहीं किया और निकाह कर लिया तो क्या आ जाएगा, महरे मिसल, और सोहबत कर लेगा तो यही महरे मिसल पक्का हो जाएगा, वो देना पड़ेगा, और अगर सोहबत से पहले तलाक दे दी तो महर मुकरर नहीं किया और सोहबत से पहले तलाक देता है, अब क्या आएगा भाई, महर मुकरर ही कुछ नहीं किया था तो निसफ किसका देंगे, हां तो इस सूरत में मुता देना पड़ता है, तवज्जो है, फिर समझो, अगर निकाह किया है और महर मुकरर नहीं किया तो खुद ब खुद महरे मिसल आ जाता है, लेकिन अगर सोहबत से पहले तलाक दे दी तो फिर मुता देना पड़ेगा, तीन कपड़े देने पड़ेंगे, और अगर सोहबत कर ली है तो फिर महरे मिसल ही देना पड़ेगा, बात समझ में आ गई, या खावन मर गया तो भी महरे मिसल ही देना पड़ेगा, और अगर निकाह करते हुए महर को मुकरर किया है बाकायदा, मसलन 1 लाख या 2 लाख, तो फिर अगर सोहबत कर ली तो फिर पूरा महर देना पड़ेगा, और अगर सोहबत से पहले तलाक दे दी तो जो मुकर्रर किया है उसका निसफ देना पड़ेगा। अब वही बात बयान कर रहे हैं, कहते हैं वह इन तल्लकहा कब्ल दुखूल वल खलवती फलहा निसफुल मुसम्मा, और अगर खावन ने बीवी को तलाक दे दी कब्ल दुखूल सोहबत करने से पहले, वल खलवती और तन्हाई से पहले, खलवत का माना तन्हाई भाई, और खलवत से मुराद यहां खलवत सहीहा है, यानी कामिल तन्हाई, याद रखो शरीयत में बहुत से अहकाम के अंदर खलवत सहीहा का भी वही हुक्म है जो वती यानी सोहबत का है, यानी जैसे सोहबत करने से महर पक्का हो जाता है वो पूरा अब खावन को देना पड़ेगा, इसी तरह अगर खलवत सहीहा पाई गई यानी कामिल तन्हाई पाई गई तो भी पूरा महर देना पड़ेगा। कामिल तन्हाई यह है कि मर्द और औरत ऐसी जगह पर इकट्ठे हो गए, ऐसी जगह पर उनको तन्हाई मुयस्सर आ गई जहां सोहबत से कोई चीज मान्या नहीं, मसलन दरवाजा भी बंद है, और मसलन खावन या बीवी में से कोई बहुत शदीद बीमार भी नहीं है, और नीज दोनों में से कोई हालत एहराम वगैरह में भी नहीं है, या इसी तरह बीवी जो है हैज की हालत में भी नहीं है, तो देखो किसी किस्म का कोई मानिया मौजूद नहीं सोहबत करने से, इसको कहते हैं खलवत सहीहा, इसको क्या कहते हैं, खलवत सहीहा कहते हैं, और अब खावन बेशक सोहबत न करे, सिर्फ खलवत सहीहा पाई गई, खावन ने सोहबत नहीं की, लेकिन फिर भी खावन को पूरा महर देना पड़ेगा। वजह यह कि औरत के बस में तो इतना ही था, उसने अपने आप को खावंद के सुपुर्द कर दिया, उसने तो अपने आप को खावंद के सुपुर्द कर दिया है, तो लिहाजा जब उसने अपने आप को सुपुर्द कर दिया है तो अब खावंद चाहे सोहबत करे या ना करे, अब उसको वो पूरा महर देना पड़ेगा जो उसने बदल मुकर्रर किया था। तो ये थी खलवत सहीहा भाई। अब देखिए भाई किताब पर, कहते हैं वह इन तल्लकहा कब्ल दुखूल वल खलवती, और अगर खामन ने बीवी को तलाक दे दी सोहबत से पहले, वल खलवती और खलवत से पहले, सोहबत कर ली फिर भी पूरा महर, खलवत सहीहा पाई गई बेशक सोहबत नहीं की लेकिन फिर भी पूरा महर देना पड़ेगा, लेकिन अगर इसने तलाक दे दी कब्ल दुखूल वल खलवती सोहबत से और खलवत सहीहा से पहले, फलहा निस्फुल मुसम्मा, तो औरत के लिए निस्फ मुसम्मा हो गए यानी मुकर्ररा महर का निस्फ भाई। और दलील क्या कहते हैं, लिकौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, व इन तल्लक तुमोहुन्ना, और अगर तुम उन औरतों को तलाक दे दो, मिन कबल अन तमस्सूहुन्ना, उनको छूने से पहले, उनसे सोहबत करने से पहले अगर तुम उनको तलाक दे दो। और आगे अल्लाह फरमाते हैं वकद फरज तुम लहुन्न फरीजतन, इस हाल में कि तुमने उनके लिए महर मुकर्रर किया हो, अगर तुम उन औरतों को छूने से पहले या उन्हीं उनके साथ सोहबत करने से पहले उनको तलाक दे दो, और वकद फरज तुम लहुन्न फरीजतन, और तुमने उनके लिए कोई महर मुकर्रर किया हुआ था, फनिस्फ मा फरज तुम, तो वो जो तुम्हारा मुकर्रर किया हुआ है उसका निसफ, यानी उसका यानी निस्फ मा, जब महर मुकर्रर किया था और सोहबत से पहले तलाक दे दो तो निसफ देना पड़ेगा उस मुकर्ररा का। दलील समझ में आ गई। तो कहते हैं लिकौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, व इन तल्लक्तुमूहुन्न मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न अल आयह, अल आयह भाई याद रखो, इसको आप मंसूब भी पढ़ सकते हैं और मरफू भी। मरफू पढ़ेंगे तो ये मुब्तदा बनेगा, अल आयतु मारूफतुन, ये आयत मालूम है, ये आयत क्या है मालूम है, हमने कुछ हिस्सा जिक्र कर दिया, आप बाकी हिस्सा खुद पढ़ लीजिए। तो अल आयतु हुआ मुब्तदा और मालूमतुन या मारूफतुन इसकी खबर है, तो इस पर रफा पढ़ेंगे अल आया पर, और आप चाहें तो इस पर नसब पढ़ें आई इकरा इल आयता, तो ये मफूल भी ही बन जाएगा इकरा फेल अमर के लिए कि आप पढ़ लीजिए अल आयता, इस आयत को हमने थोड़ा सा हिस्सा जिक्र किया, आप बाकी आयत पढ़ लीजिए। आगे देखिए वल अकयसतुम मुतआरिजतुन, और कियास जो है यहां बाहम मुतआरिज हैं, अकयसा जमा है कियास की, तो सीगा साहिब हिदाया ने जमा वाला इस्तेमाल किया, लेकिन मुराद इससे दो कियास हैं, और कभी कभार तस्निया पर भी जमा का इतलाक कर दिया जाता है, तस्निया के लिए भी जमा का सीगा इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि तस्निया भी जमा ही है, अरबी जुबान के एतबार से तस्निया भी क्या है जमा, क्योंकि जमा में तीन अफराद जमा होते हैं, तो तस्निया में दो अफराद जमा हो रहे हैं, तो इसमें भी देखो जमा वाला माना है। तो कहते हैं वल अकयसतुम मुतआरिजतुन, और कियास बाहम मुतआरिज हैं, फफीही तफवीतु ज़ौजिल मिल्क अला नफ्सिही बिख्तियारिही वफीही औदुल माकूदि अलैही इलैहा सालिमन फकान अल मर्जु फीही नस्सा। भाई इस जगह को अच्छी तरह समझ लें, साहिबे हिदाया फरमाते हैं कि यहां पर दो कियास आपस में मुतआरिज हैं, मुखालिफ हैं। देखो एक औरत से एक शख्स का निकाह हुआ और महर मुकर्रर किया था, फिर इस औरत को सोहबत से पहले खावन तलाक देता है, तो नस के अंदर तो आ गया कि इसको निस्फ महर, वो जो मुकर्ररा महर था उसका निसफ देना पड़ेगा, लेकिन अब कियास क्या तकाजा करता है वो बयान फरमा रहे हैं साहिब हिदाया। तो याद रखो कहते हैं दोनों कियास आपस में मुतआरिस हैं, एक कियास की तरफ हम देखें तो वो हमें बतलाता है कि पूरा महर देना चाहिए खावंद को, और दूसरे कियास की तरफ हम देखें तो वो तकाजा करता है कि औरत को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए जी। तो दोनों कियास क्या है आपस में मुतआरिज। मसलन देखो एक कियास ये है कि खावंद को पूरा महर देना चाहिए, बेशक सोहबत से पहले तलाक दी है लेकिन खावंद को पूरा महर देना चाहिए। क्यों भाई खावंद को पूरा महर क्यों देना चाहिए? कहते हैं इसलिए क्योंकि खावंद ने अपनी मर्जी से अपने इख्तियार से औरत को तलाक दी है, और खावंद इस औरत का मालिक बन चुका था, यानी इसे नफा उठाने का मालिक बन चुका था, अब इसमें औरत का तो कोई कसूर नहीं है, उसको छोड़ने का इख्तियार खावंद के पास था और उसने अपनी मर्जी से एक चीज पर से अपनी मिल्कियत खत्म कर दी, तो इसमें औरत का तो कोई कसूर नहीं है, लिहाजा जो आपस में इवज तय हुआ था वो खावंद को पूरा देना चाहिए, क्योंकि ये जो उसने अपनी मिल्कियत खत्म की है इसके अंदर, ये इसने अपने इख्तियार से खत्म की है, इसमें औरत का कोई दखल नहीं, लिहाजा पूरा इवज यानी पूरा महर देना चाहिए। एक कियास ये तकाजा करता है, दूसरा कियास ये तकाजा करता है कि औरत को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। वजह यह कि खावंद ने यह जो महर देना था यह उस औरत से नफा उठाने का इवज था, और खावंद ने तो नफा इससे उठाया ही नहीं, जो वो जो माकूदुन आले वो जिस चीज पर आकद हुआ था कि खावंद उसे नफा उठाएगा, वो माकूदुन आले तो औरत के पास सही सलामत वापस रहा भाई, खावंद ने तो उसे फायदा ही नहीं उठाया, तो जब औरत का माकूदुन आले उसके अपने पास सलामत रहा तो उसको इवज भी नहीं मिलना चाहिए। تو کہتے ہیں والاقیسۃ متعارضۃ، اور قیاس جو ہیں وہ آپس میں متعارض ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں. ففیہ تفویت الزوج الملک علی نفسہ باختیارہ، یہ پہلا قیاس ہے. ففیہ تو اس کے اندر، یہ جو خاوند نے طلاق دی ہے صحبت سے پہلے، تفویت الزوجی، خاوند نے فوت کر دیا ہے الملک، ملکیت کو، علی نفسہ، اپنی ذات پر. خاوند کو جو ملکیت حاصل تھی وہ اس نے خود جو ہے وہ فوت کر دی ہے. علی ضرر کے لیے آتا ہے، علی نفسہ، اپنی ذات کے خلاف. خاوند نے یہ جو ملکیت فوت کی ہے، ملکیت یوں کہ ضائع کی ہے، یہ اپنی ذات کے خلاف کی ہے، بھی اختیار ہی، اپنے اختیار سے. تو اپنے اختیار سے ملکیت کو اس نے چھوڑا ہے بھائی. تو کہتے ہیں ففیہ، تو اس کے اندر تفویت الزوج الملک، خاوند کا ملکیت کو فوت کرنا ہے، علی نفسہ، اپنی ذات کے خلاف، بھی اختیار ہی، اپنے اختیار سے. یہ تقاضا کر رہا ہے کہ پورا مہر دینا چاہیے بھائی، اس نے ملکیت خود اپنی مرضی سے ختم کی ہے. وفیہ عود المعقود علیہ الیہا سالمن، اور نیز اس میں عود المعقود علیہ، وہ چیز جس پر عقد کیا گیا تھا اس کا لوٹنا ہے، الیہا عورت کی طرف، سالمن صحیح سلامت. یعنی عورت سے منافع بزا کا فائدہ اٹھانا تھا اس خاوند نے، وہ تو منافع بزا اس کے پاس صحیح سلامت رہے، خاوند نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو معقود ان علیہ اس کے پاس واپس صحیح سلامت لوٹ آیا. یہ تقاضا کرتا ہے کہ عورت کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے. تو کہتے ہیں وفیہ عود المعقود علیہ الیہا سالمن، اور اس کے اندر معقود علیہ کا عورت کے پاس واپس لوٹنا ہے سالمن، سالم ہو کر. فکان المرجع فیہ النص، تو اس کے اندر رجوع جو ہے نص کی طرف ہوگا. دونوں قیاسوں میں آپس میں ٹکراؤ ہے، ایک قیاس تقاضا کرتا ہے پورا مہر دینا چاہیے، دوسرا قیاس تقاضا کرتا ہے کچھ بھی نہیں دینا چاہیے. تو دونوں قیاس باہم متعارض ہوئے، لہذا اب ہمیں نص کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا، اور ہم نص پر عمل کریں گے، یعنی قرآن پر. اور قرآن میں کیا آیا، فنصف ما فرضتم، جو تم نے مقرر کیا تھا اس کا نصف دے دو. اب یہاں اشکال ہوتا ہے کہ اے صاحب ہدایہ، جب قرآن کے اندر ایک بات آ گئی تو پھر اس کے مقابلے میں قیاس کے تو ذکر کی کوئی حاجت ہی نہیں. قیاس تو عقلی دلیل ہے، جب قرآن اور حدیث میں ایک حکم ہمیں نہیں ملتا پھر ہم قیاس کرتے ہیں، جب یہاں قرآن کے اندر ایک حکم موجود تھا تو پھر قیاس پیش کرنے کی کیا حاجت. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن یاد رکھو یہ صاحب ہدایہ ہیں بھائی، انسان ان کی کتاب دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے بھائی، حیران رہ جاتا ہے. تو پھر بعض شارحین نے جواب دیا کہ یہاں صاحب ہدایہ نے قیاس اس لیے ذکر فرمایا کہ قرآن سے تو ایک حکم معلوم ہو گیا تھا، اب سوال پیدا ہوا کہ صاحب ہدایہ، قرآن سے تو ایک بات ہمیں پتہ چل گئی، کیا ہماری عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ دیکھو قرآن اور حدیث میں احکام ذکر ہوتے ہیں، چاہے ہماری عقل ان کی تائید کرے یا تائید نہ کرے، تو بعض چیزیں تو ہماری عقل میں آ جاتی ہیں، عقل بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے، لیکن بعض چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی، تو عمل تو انہی پر کرنا ہے بے شک ہماری عقل میں نہ آئے. تو سوال پیدا ہوا ہے صاحب ہدایہ، قرآن سے تو یہ حکم معلوم ہو گیا تھا، کیا ہماری عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے؟ تو صاحب ہدایہ نے جواب دیا کہ یہاں پر دو قیاس ہیں اور دونوں آپس میں متعارض ہیں، ایک قیاس تقاضا کرتا ہے کہ پورا کا پورا مہر دینا چاہیے، اور ایک قیاس تقاضا کرتا ہے کہ کچھ بھی نہیں دینا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی. یہ بات شارحین نے تقریر کی کہ قرآن سے تو حکم کا پتہ چل گیا تھا، اب صاحب ہدایہ یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ کیا قیاس سے بھی تائید ہوتی ہے یا نہیں. تو بتلایا قیاس میں آپس میں خود ہی ٹکراؤ ہے، یہاں پر قیاس میں یہاں ٹکراؤ ہے، تو یہاں نص ہی پر عمل ہے، قیاس پر عمل یہاں نہیں ہے بھائی. کبھی تو قیاس بھی تائید کر دیتا ہے تو نص پر بھی عمل ہو رہا ہے اور قیاس پر بھی عمل ہو رہا ہے، لیکن یہاں صرف نص پر ہی عمل ہو سکتا ہے، قیاس میں آپس میں ٹکراؤ ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. جبکہ بعض شارحین نے یہاں اور تقریر کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہاں قیاس تو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ عورت کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے کیونکہ خاوند نے اسے نفع نہیں اٹھایا، جب نفع نہیں اٹھایا تو خاوند کو مہر بھی نہیں دینا پڑے گا، لیکن نص میں چونکہ آ گیا اس لیے ہمیں نصف مہر دینا پڑے گا. قیاس تو تقاضا کر رہا تھا اسے کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے، لیکن نص میں آ گیا نصف دینا پڑے گا تو اس لیے نصف دے گا خاوند. تو صاحب ہدایہ بتلانا چاہتے ہیں نہیں نہیں، قیاس دونوں طرف کے موجود ہیں، صرف ایک طرف کا قیاس یہاں نہیں ہے. ایک قیاس اگر یہ تقاضا کر رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے عورت کو، تو دوسرا قیاس یہ بھی تقاضا کر رہا ہے کہ خاوند کو پورا مہر دینا چاہیے کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے اس ملکیت کو ختم کیا ہے. بھائی یہ بات شارحین نے تقریر کی، لیکن ملا عبد الغفور رحمہ اللہ، میں نے بتلایا جو شاگرد ہیں ملا جامی رحمہ اللہ کے، انہوں نے عجیب تقریر کی، یہاں انسان حیران رہ جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ عام مخصوص البعض ہے. یہ کیا ہے؟ عام مخصوص البعض ہے، اور عام مخصوص البعض ظنی ہوتا ہے، اور اس میں قیاس کے ذریعے اور تخصیص بھی کی جا سکتی ہے، وہاں قیاس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. تو لہذا یہ آیت بھی چونکہ عام مخصوص البعض ہے تو یہاں بھی قیاس کی طرف رجوع کیا جا سکتا تھا، لیکن صاحب ہدایہ نے بتایا کہ نہیں، یہاں قیاس باہم متعارض ہیں، دونوں طرف کے قیاس ہیں، ایک طرف کا قیاس یہاں نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو تفصیل کلام یاد رکھو بھائی. دیکھو ایک ہوتا ہے عام، جس میں ایک عام حکم دیا جائے اور پھر اس میں سے بعض افراد کی تخصیص کر لی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں عام مخصوص البعض، یعنی ایسا عام جس میں سے بعض افراد کی تخصیص کر دی گئی. دیکھو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں درجہ ثالثہ کے ہر طالب علم کو ہزار ہزار روپے دے دینا، مگر زید عمر اور بکر کو مت دینا. تو دیکھو یہ عام مخصوص البعض ہے. پہلے میں نے عام حکم دیا درجہ ثالثہ کے ہر طالب علم کو ہزار ہزار روپے دے دینا، دیکھو یہ حکم عام ہے، درجہ ثالثہ کا ہر طالب علم اس میں آ گیا. لیکن پھر میں نے کچھ کی تخصیص کر دی کہ ان میں سے زید عمر اور بکر کو نہیں دینا، تو یہ عام کیا ہے؟ عام مخصوص البعض. اور یاد رکھو یہ جو عام مخصوص البعض ہوتا ہے یہ ظنی ہوتا ہے، قطعی نہیں. عام مخصوص البعض کیا ہوتا ہے؟ ظنی ہوتا ہے، قطعی نہیں. وہاں قیاس کے ذریعے آپ اور بھی تخصیص کر سکتے ہیں. مثلا میں نے کیا کہا؟ درجہ ثالثہ کے ہر طالب علم کو ہزار دینا، لیکن زید عمر بکر کو نہ دینا. اب یہ عام مخصوص البعض ہوا، یہ ظنی بن گیا، اور جب یہ ظنی بن گیا تو قیاس کے ذریعے اس میں آپ اور بھی تخصیص کر سکتے ہیں. چنانچہ آپ نے غور کیا کہ بھئی یہ زید عمر بکر، ان کو اس حکم سے کیوں نکالا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ ان کو پیسے کیوں نہیں دینے؟ آپ نے غور کیا تو پتا چلا انہوں نے امتحان میں شرکت نہیں کی مثلا. اب آپ کو علت پتا چل گئی. جب آپ کو علت پتا چل گئی تو اگر یہی علت آپ کو کسی اور طالب علم میں ملتی ہے تو آپ اس کو بھی اس حکم سے نکال سکتے ہیں، آپ اس کو بھی پیسے نہ دیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو اب آپ اپنی عقل کے ذریعے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس نے بھی امتحان نہیں دیا لہذا اس کو بھی نہیں دینا، یہ دوسرے نے بھی امتحان نہیں دیا لہذا اس کو بھی نہیں دینا. تو دیکھا عام مخصوص البعض ظنی بن جاتا ہے، اور قیاس کے ذریعے وہاں مزید تخصیص جائز ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب مہر مقرر کیا ہو اور صحبت سے پہلے طلاق دے دو تو کتنا دو؟ نصف. یہ عام حکم ہے، جب مہر مقرر کیا ہو اور صحبت سے پہلے طلاق دو تو کتنا دو؟ نصف. یعنی جب بھی مہر مقرر کیا ہو اور صحبت سے پہلے طلاق دو گے تو نصف دینا پڑے گا. تو یہ ایک عام حکم ہے، لیکن یہاں بھی کچھ افراد کی تخصیص ہے. اگر شراب یا خنزیر مقرر کیے تھے تو شراب اور خنزیر جب مقرر کیے تو اس صورت میں ان کا نصف نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ وہ تو مہر بان ہی نہیں سکتے. تو دیکھا اس حکم سے کچھ افراد نکل گئے یا نہیں؟ جب کچھ افراد کی تخصیص ہو گئی تو یہ حکم عام مخصوص البعض بن گیا. جب یہ عام مخصوص البعض بن گیا تو یہ ظنی بن گیا، تو یہاں اس کے ساتھ قیاس کو پیش کیا جا سکتا ہے. تو صاحب ہدایہ نے اس لیے یہاں پر قیاس کو پیش فرمایا، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ قیاس یہاں کسی ایک جانب کا نہیں ہے، دونوں طرف کا قیاس موجود ہے. ایک قیاس تقاضا کرتا ہے سارا مہر دینا چاہیے، دوسرا قیاس تقاضا کرتا ہے कुछ भी नहीं देना चाहिए, तो कियास मुतआरिस हैं, लिहाजा अब और कोई सूरत नहीं, उस नस पर ही अमल किया जाएगा, वो जो आम मखसूसुल बास है, वो जो जन्नी है। बात समझ में आ गई जी। अब फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वल अकयसतु मुतआरिजतुन, और कियास जो हैं वो बाहम मुतआरिस हैं, यानी एक दूसरे के मुखालिफ हैं। फफी ही तफवीतु ज़ौजिल मिल्क अला नफसी ही बिख्तियारी ही, इसके अंदर खावन जो है मिल्कियत को फौत कर रहा है अपनी जात के खिलाफ, बिख्तियारी ही अपने इख्तियार से, तो पूरा महर देना चाहिए। वफी ही आउदुल माकूद अलैहि इलैहा सालिमन, और इसके अंदर औरत के जो माकूदुन आले है वो उसके पास सही सलामत वापस आ गया, तो ये तकाजा करता है इसको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। फकान अल मर्जू फीही नस्सा, तो इसके अंदर रुजू नस ही की तरफ होगा, यहां कियास से तख्सीस वगैरह नहीं हो सकती। वशारत अन यकून कबल अल खलवती, और साहिब कुदूरी ने ऊपर मतन में यह भी शर्त लगाई कि यह तलाक खलवत से पहले होनी चाहिए। भाई ऊपर मतन में आया था ना, वह इन तल्लकहा कबल दुखूल वल खलवती, खलवत की भी कैद लगाई थी, तो कहते हैं वशारत अन यकून कबल अल खलवती, और साहिब कुदूरी ने यह भी शर्त लगाई कि यह तलाक खलवत से पहले होनी चाहिए। लिअन्नहा कद्दुखूल इंदना, इसलिए क्योंकि खलवत सहीहा भी हमारे नजदीक सोहबत ही की तरह है। अलामा नुबय्यिनुहू, उस वजह से जो हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह, उस वजह से जो हम आगे इंशाअल्लाह बयान करेंगे, यह अनकरीब इसका जिक्र भी आ जाएगा। भाई आगे देखिए, قال وإن تزوج ولم يسم لها مهرا أو تزوج على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها। भाई पीछे साहिब हिदायत ने आपको बतलाया था कि निकाह के अंदर महर जरूर आएगा, महर जरूर आएगा, और आप महर को जिक्र करें या ना करें निकाह सही हो जाएगा, चाहे आप महर की नफी ही कर दें फिर भी निकाह सही हो जाएगा, तो महर ने तो जरूर आना है, तो अगर महर को जिक्र नहीं किया तो फिर महर में क्या चीज आएगी। तो मैं आपको पहले बता चुका कि इस सूरत में क्या आएगा, महरे मिसल आएगा, यानी ये जो औरत है इसके खानदान में इस जैसी औरतों का जो महर होता है वो यहां पर महर आ जाएगा, इसको महरे मिसल कहते हैं, यानी इसके खानदान में इस जैसी कोई औरत हो, अगर यह निकाह के वक्त कंवारी थी वो भी क्या हो, कंवारी हो, यह अगर हसीनो जमील है वो भी क्या हो, हसीनो जमील हो, इसी तरह जो सिफात इसके अंदर है वो सिफात उसके अंदर भी हो, तो उसका जो महर होता है इसके खानदान में इस जैसी औरत का जो महर होता है वो इसको महर मिलेगा। बात समझ में आ गई, अब वही बयान कर रहे हैं। قال وإن تزوج ولم يسم لها مهرا, और अगर खावन ने उस औरत से निकाह किया और उसके लिए महर जिक्र नहीं किया, यानी महर पर खामोशी इख्तियार की, औ تزوج अला अला महर लहा, या उस औरत से निकाह किया, अला अला शर्त के लिए आता है, औ تزوج या उस औरत से निकाह किया, अला अला महर लहा, इस शर्त पर कि उसके लिए कोई महर नहीं होगा, फलहा महर मिसलिहा, तो उस औरत के लिए क्या होगा, उसका महर मिसल होगा, इन दखला बिहा औ माता अनहा, अगर खावन ने इसे सोहबत कर ली, औ माता अनहा, या इसको छोड़कर मरा। वकाल शाफिय रहमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं, ला यजिबु शय इन फिल मौती, कि मौत की सूरत में कुछ भी वाजिब नहीं, अगर खावंद ने महर मुकरर नहीं किया और निकाह कर लिया है, या महर की नफी कर दी है और निकाह कर लिया है, और सोहबत से पहले ही खावंद का इंतकाल हो गया, तो इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो कहते हैं वकाल शाफी रहमहुल्ला ला यजिबु शय उन फिल मौती, कि मौत की सूरत में कोई चीज वाजिब नहीं होगी। वह अक्सर हम अला अन्नहु यजिबु फी दुखूली, और अक्सर शवाफिया जो हैं वो इस बात पर हैं कि सोहबत की सूरत में वाजिब हो जाएगा, यानी मौत की सूरत में तो कुछ नहीं वाजिब, लेकिन अगर सोहबत कर ली है और महर मुकर्रर नहीं किया था तो फिर महरे मिसल वाजिब हो जाएगा। लहू, امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان المہر خالص حقها، کہ جو مہر ہے یہ خالص عورت کا حق ہے، فتتمکن من نفیہ ابتداء، تو لہذا یہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ اس کی نفی کر دے ابتدا سے ہی، کما تتمکن من اسقاط انتہا، جیسے یہ قادر ہے اس بات پر کہ انتہا اس کو ساقط کر دے. بھائی دیکھیے، یاد رکھو ہمارے نزدیک ابتداءً مہر جو ہے حق المرأة بھی ہے اور حق شرع بھی ہے، لہذا نکاح کرو گے مہر ضرور آئے گا. اگر ذکر کر دیا اچھی بات ہے، اگر ذکر نہ کیا تو مہر مثل آ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ یہ حق شرع بھی ہے اور حق المرأة بھی ہے. تو یہ ہے ابتداءً، ابتداء نکاح میں یہ جو مہر ہوتا ہے یہ حق شرع بھی ہے اور حق المرأة اس عورت کا بھی حق ہے، جبکہ بقا کے اعتبار سے یعنی بعد میں اب یہ صرف عورت کا حق بن جائے گا. لہذا بعد میں اگر عورت مہر کو معاف کرنا چاہے کہ سارا مہر ہی معاف کر دیتی ہے، میں کچھ لیتی نہیں، بھئی بعد میں اب یہ خالص عورت کا حق بن گیا ہے، لہذا وہ معاف کر سکتی ہے. لیکن ابتدائے نکاح کے اندر وہ کہے کہ نہیں میں مہر کے بغیر ہی نکاح کرنا چاہتی ہوں، نہیں بھائی، ابتدائے نکاح میں یہ مہر خالص عورت کا حق نہیں ہے بلکہ شریعت کا بھی حق ہے، لہذا مہر تو ضرور آئے گا. تو عند الاحناف ابتداء مہر حق شرع بھی ہے اور حق المرأة بھی ہے، اور بقاء یا انتہاء یہ جو مہر ہے یہ صرف کس کا حق ہے؟ عورت کا حق ہے، وہ اس کو سارا معاف کر سکتی ہے. تو امام شافعی رحم اللہ اس ابتدا کو قیاس کرتے ہیں انتہا پر. امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مہر عورت کا حق ہے خالص، اور جیسے انتہاءً عورت پورا مہر معاف کر سکتی ہے، تو ابتداءً بھی یہ عورت ہی کا حق ہے، وہ پورا مہر ابتدا سے ہی ساقط کر دے کہ میں بغیر مہر کے نکاح کرتی ہوں، تو وہ کر سکتی ہے کیونکہ یہ خالص عورت کا حق ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ابتداءً یہ حق شرابی ہے، ابتداء میں معاف نہیں کر سکتی، مہر ضرور آئے گا نکاح کے اندر، ذکر نہ بھی کرے تو مہر مثل آ جائے گا. ہاں بعد میں پھر یہ عورت کا حق بن گیا، بعد میں وہ پورا مہر معاف کر سکتی ہے. تو کہتے ہیں لہو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان المہر خالص حقها، کہ یہ مہر جو ہے خالص اس عورت کا حق ہے، فتتمکن من نفیہ ابتداء، تو یہ عورت قادر ہے کہ اس مہر کی نفی کر دے ابتداء، ابتدا سے ہی یعنی ابتداء نکاح سے ہی، کما تتمکن من اسقاطہ انتہاء، جیسے کہ عورت قادر ہے کہ وہ اس مہر کو ساقط کر سکتی ہے، انتہاء یعنی انتہا کے اعتبار سے ساقط کر سکتی ہے، معاف کر سکتی ہے. تو جب انتہا میں معاف کر سکتی ہے تو شروع میں بھی معاف کر سکتی ہے. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المہر وجوبا حق الشرع علی ما مر، کہ مہر جو ہے یہ وجوب کے اعتبار سے شریعت کا حق ہے، علی ما مر، اس وجہ سے جو بات گزر گئی. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان تبتغوا باموالکم، کہ اپنے مالوں کے ذریعے بیویوں کو تلاش کرو گے، تو لہذا یہ حق شرع ہے. وانما یصیر حقا لها فی حالت البقاء، اور یہ مہر عورت کا حق ہو جاتا ہے فی حالت البقاء، بقائے نکاح کی صورت میں، بعد میں یہ کیا ہے؟ عورت کا حق بن جاتا ہے. فتملک الابراء دون النفی، لہذا عورت معاف کرنے کی تو مالک ہے، نفی کی مالک نہیں. یعنی بعد میں عورت مہر کو معاف کرنا چاہے، اب یہ خالص اس کا حق ہے، معاف کر سکتی ہے، لیکن ابتدا سے ہی مہر کی نفی کر دے کہ مہر آئے گا ہی نہیں، نہیں، اس کی نفی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ حق شرع ہے. تو یہ معنی ہے فتملک الابراء، تو یہ عورت معاف کرنے کی مالک ہے، یعنی بعد میں معاف کر سکتی ہے. دون النفی، نفی یعنی شروع سے ابتدا سے ہی نفی کر دے، ایسا نہیں کر سکتی. ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعۃ، تو یہ اس کو بھی پچھلے متن سے جوڑیں، بات کیا چل رہی ہے؟ اگر مہر مقرر نہیں کیا یا مہر کی نفی کر دی، پھر بھی کیا دینا پڑے گا؟ مہرے مثل، ابھی بات گزری. جبکہ اگر اسی عورت کو صحبت سے پہلے طلاق دے تو کیا دینا پڑے گا؟ متعا دینا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہی آپ ذکر کر رہے ہیں، ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعۃ، اور اگر اس عورت کو جس کا مہر مقرر نہیں کیا تھا، اس کو اگر خامن نے طلاق دے دی قبل الدخول بها، اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے ہی، فلها المتعۃ، تو اس عورت کے لیے کیا ہے؟ متعا ہے. لقوله تعالی، دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ متع کیوں دینا پڑے گا، کہتے ہیں لقوله تعالی، اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے، ومتعوهن، اور ان عورتوں کو تحفہ دو، ان عورتوں کو نفع دے دو، کچھ تحفہ دے دو، علی الموسع قدرہ، موسع یعنی مالدار بھائی، علی الموسع مالدار پر واجب ہے، قدرہ اس کے بقدر، یعنی اگر مالدار ہے تو اعلی کپڑے دے، اور اگر غریب اور تنگ دست ہے تو ادنا کپڑے دے دے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پوری آیت دیکھ لیجئے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنی ان عورتوں کو طلاق دو، مالم تمسوہن، جن کو تم نے ابھی چھوا نہیں، یعنی جن سے ابھی صحبت نہیں کی، او تفریضو لہن فریضتن، یا جن کا تم نے کوئی مہر مقرر نہیں کیا. وہ عورتیں جن کا تم نے کوئی مہر مقرر نہیں کیا تو ان کو طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی تم طلاق دے سکتے ہو. ومتعوہن، اور ان کو نفع دے دو، یعنی ان کو تحفہ دے دو. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، مالدار پر اس کے بقدر ہے، وعلی المقتر، اور جو تنگ دست ہے یعنی غریب ہے، قدرہ اس پر اس کے بقدر ہے، یعنی تحفہ. بات سمجھ میں آگئی؟ مالدار اپنی وسعت کے بقدر تحفہ دے گا اور غریب اپنی وسعت کے بقدر تحفہ دے گا. متاعاً بالمعروف، نفع دینا ہے بالمعروف اچھے طریقے سے، حقاً علی المحسنین، اور یہ احسان کرنے والوں پر، نیکی کرنے والوں پر حق ہے، یہ نیکی کرنے والوں پر حق ہے کہ وہ تحفہ دیں. اس طرح اگر عورت کا مہر مقرر نہیں کیا اور اس کو طلاق دیتے ہیں، طلاق دے سکتے ہیں لیکن ان کو کوئی تحفہ دے دیں. آگے دیکھیے، کہتے ہیں ثم هذه المتعة واجبة رجوعا الى الامر، پھر یہ متعة واجب ہے ہمارے نزدیک، رجوعا الى الامر، امر کی طرف رجوع کرتے ہوئے. بھائی آیت کے اندر امر کا صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، متعوهن، متعوهن، یہ دیکھو امر کا صیغہ ہے، ان عورتوں کو نفع دے دو، ان عورتوں کو تحفہ دے دو، تو یہ امر کا صیغہ آیا ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا یہ متع دینا ہمارے نزدیک واجب ہے. بھائی تو کہتے ہیں ثم هذه المتعة واجبۃ، پھر یہ متع واجب ہے ہمارے نزدیک، رجوعا الى الامر، امر کی طرف رجوع کرتے ہوئے، کہ یہ امر کا صیغہ ہے یہاں پر. وفیہ خلاف مالک رحمہ اللہ، اور اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ متع دینا مستحب ہے، واجب نہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، حقا علی المحسنین، کہ یہ حق ہے کس پر؟ نیکی کرنے والوں پر. معلوم ہوا متع دینے والوں کو محسنین کہا گیا، نیکی کرنے والے، اور کسی کے ساتھ نیکی کرنا واجب نہیں ہوتا. احسان اور نیکی کسی کے ساتھ کرنا واجب نہیں، آپ کی مرضی ہے نیکی کریں یا نیکی نہ کریں. تو دیکھا یہ محسنین کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ متع مستحب ہے، واجب نہیں. یہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں. ہم جواب دیتے ہیں کہ ایک تو متعو امر کا صیغہ آیا، اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، یہاں علی آیا، اور علی لزوم اور وجوب کے لیے آتا ہے. مثلا میں آپ پر کوئی کام واجب کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ کو کہوں گا علیک ان تفعل ھذا، آپ پر واجب ہے ایسا کرنا، آپ پر لازم ہے ایسا کرنا. تو علی کس لیے آتا ہے؟ لزوم اور وجوب کے لیے. تو یہاں بھی علی آیا. اور نیز اسی طرح متاعم بالمعروف، مفعول مطلق آیا گیا، مفعول مطلق، ضربتہ ضربن، یہ مفعول مطلق کس لیے آتا ہے؟ اس فعل میں تاکید پیدا کر دیتا ہے، اس میں زور پیدا کر دیتا ہے. تو دیکھو یہاں متعو کے بعد متاعن مفعول مطلق آیا، اس نے اس میں تاکید پیدا کر دی، زور پیدا کر دیا. معلوم ہوا دینا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نیز نیز حقاً آیا آگے، حقاً، معلوم ہوا یہ نیکی کرنے والوں پر حق ہے، اور حق کی ادائیگی بھی واجب ہوتی ہے. تو ہمارے نزدیک امر کا صیغہ آیا، اسی طرح علا آیا، اسی طرح متاعن مفعول مطلق آیا، اور اسی طرح حق کا نایا، یہ ساری چیزیں وجوب پر دلالت کر رہی ہیں. اور باقی آپ نے کہا تھا محسنین کے لفظ سے پتا چل رہا ہے نیکی کرنے والے، اور نیکی تو واجب نہیں ہوتی، تو اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو وہ لوگ جو واجب کو بھی ادا کرتے ہیں، محسنین سے مراد وہ ہیں جو واجب کو ادا کرتے ہیں اور کچھ مزید زائد بھی اپنی طرف سے دیتے ہیں، یہ ہیں محسنین بھائی. واجب پر بھی عمل کرتے ہیں اور کچھ مزید احسان بھی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، کچھ زائد بھی اپنی طرف سے دے دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارے نزدیک یہ واجب ہے. آگے دیکھیے، والمتعت ثلاثة أصواب من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحفة. اب متعہ کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ متعہ کس چیز کا نام ہے. تو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ کتنی چیزیں ہیں متعہ میں. تین کپڑے ہیں عربوں کے ہاں، چونکہ ایک عورت کے جوڑے میں کیا کیا شامل ہوتا ہے، ایک لمبی قمیص ہے، ایک دوپٹہ ہے اور ایک بڑی چادر ہے، تو یہ تین چیزیں. جبکہ ہمارے ہاں شلوار، قمیص، دوپٹہ اور ایک بڑی چادر، یعنی چار کپڑے ہوں گے بھائی. تو کہتے ہیں والمتعۃ ثلاثۃ اسواب، اور متعہ جو ہے وہ تین کپڑے ہیں، من کسوتی مثلیہا، اس جیسی عورت کے کپڑوں میں سے، یعنی اس جیسی عورتیں جس طرح کے کپڑے استعمال کرتی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر متوسط درجے کی ہے تو متوسط، اگر مالدار ہے تو اعلیٰ دینا پڑے گا، غریب ہے تو ادنا دینا پڑے گا. وہی درعن، درعن یہ قمیص کو کہتے ہیں، لمبی قمیص. وہی درعن، اور وہ تین کپڑے جو ہیں، درعن بڑی قمیص ہے، وہ خمار اور دوپٹہ ہے، وہ ملحفۃ اور اوڑھنی ہے، یعنی بڑی چادر ہے. وهذا التقدير مروي عن عائشه وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، اور یہ اندازہ روایت کیا گیا ہے حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھائی. انہوں نے متعا کا اندازہ ان تین کپڑوں سے لگایا ہے، تو یہ تین کپڑے دینے پڑیں گے. وقوله من کسوتی مثلها، اب بھائی یہ جو تین کپڑے دینے ہیں اس میں خاوند کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا یا عورت کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا؟ بعض اوقات خاوند مالدار ہوتا ہے، عورت کا اپنا کوئی مال نہیں، وہ خاوند کے گھر میں رہ رہی ہے، اور بعض اوقات عورت امیر خاندان کی ہے تو اس کی اپنی بھی بڑی دولت ہے، وہ اب ایک شخص سے نکاح کر لیتی ہے. تو یہ جو متاع دینا ہے، جو تین کپڑے دینے ہیں، اس میں خاوند کی حالت کا اعتبار کریں گے یا عورت کی حالت کا اعتبار کریں گے؟ تو آپ کو صاحب ہتایا بتلائیں گے کہ متن میں آیا من کسوتی مثلها، اس جیسی عورتوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں، معلوم ہو عورت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا. اور نیز یہ مہر مثل کا بدل ہے بھئی. اگر مہر ذکر نہیں کیا اور نکاح کر لیا، اگر صحبت کر لے گا تو کیا دینا پڑے گا؟ مہر مثل. اور اگر صحبت سے پہلے طلاق دے تو کیا دینا پڑتا ہے؟ متعا. معلوم ہے یہ متعا کس کا بدل ہے؟ مہر مثل کا بدل ہے. اور مہر مثل میں کس کی حالت دیکھی جاتی ہے؟ عورت کی حالت، اس عورت جیسی اور عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے اس کے خاندان میں. تو جیسے مہر مثل میں عورت کی حالت معتبر ہے، تو متعا جو اس کا بدل اور قائم مقام آ گیا، اس میں بھی عورت کی حالت کا ہی اعتبار کیا جائے گا. اور یہی کہتے ہیں مذہب ہے امام کرخی رحمہ اللہ کا. تو کہتے ہیں وقولہ، اور صاحب قدوری کا یہ جو قول ہے، من کسوتی مثلها، یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیے، اس کے اندر اشارتن، اس بات کی طرف اشارہ ہے، الی انہ یعتبر حالها، کہ عورت کی حالت معتبر ہے. وہو قول الکرخی رحمہ اللہ فی المتعۃ الواجبۃ، اور یہی قول ہے امام کرخی رحمہ اللہ کا متعۃ واجبہ میں. وہ فرماتے ہیں عورت کی حالت کے مطابق تین کپڑے دینے پڑیں گے. لقیامها مقام مہر المثلی، اس لیے کیونکہ یہ مہر مثل کے قائم مقام ہے، اور مہر مثل میں تو بالاتفاق عورت کی حالت دیکھی جاتی ہے، لہذا متعۃ میں بھی عورت کی حالت دیکھی جائے گی. آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں والصحيح انه يعتبر حاله عملا بالنص، اور صحیح یہ ہے کہ مرد کی حالت معتبر ہے، عملا بالنص، نص پر عمل کرتے ہوئے. وهو قوله تعالى، اور نص کیا ہے؟ کہتے ہیں واللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، مالدار پر اس کے بقدر ہے اور تنگ دست اور غریب پر قدره اس کے بقدر ہے. معلوم ہوا مرد کی حالت معتبر ہے. کس کی حالت معتبر ہے؟ مرد کی حالت معتبر ہے، یہ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں. जबकि बास फुकहा फरमाते हैं दोनों की हालत की रियायत की जाएगी, दोनों की हालत की रियायत की जाएगी, इसलिए क्योंकि कुरान के अंदर मर्द की हालत तो जिक्र है कि मर्द की हालत का एतबार है, लेकिन औरत की हालत का भी एतबार है या नहीं यह तो कुरान में जिक्र नहीं, लिहाजा औरत की हालत का एतबार करने की वहां नफी नहीं है, तो दोनों की हालत का एतबार किया जाएगा यह बास फुकहा फरमाते हैं। लिहाजा अगर दोनों मालदार हैं तो फिर तो मालदारों वाला मुता देगा, अगर दोनों तंग दस्त हैं और गरीब हैं तो फिर गरीबों वाला मुता देगा, और दोनों में से अगर एक मालदार है और एक गरीब है तो फिर मुतवस्सित दर्जे का मुता दिया जाएगा। ये बाज फुकहा फरमाते हैं, बात समझ में आ गई। आगे देखिए, सुम्महिया ला तुजाद अला निस्फी महरी मिसलिहा, फिर ये जो मुता है इसको बढ़ाया नहीं जाएगा, अला निस्फी महरी मिसलिहा उस औरत के निस्फ महरे मिसल पर, उसके निस्फ महरे मिसल पर इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। वला तुन कसो अन खमसती दराहिमा, और निस पांच दिरहम से इसको कम भी नहीं किया जाएगा। भाई देखिए, जब महर मुकर्रर करते थे तो निस्फ महर आता था, तवज्जो है, लिहाजा यहां पर महर मुकर्रर ही नहीं किया, जब मुकर्रर ही नहीं किया तो फिर अगर सोहबत कर ली तो महरे मिसल आ जाएगा, और सोहबत से पहले तलाक दे दी तो मुता आएगा, तो ये मुता भी निस्फ महरे मिसल से जायद नहीं होना चाहिए, यानी निस्फ महरे मिसल से जायद होना लाजिम नहीं है, निस्फ महरे मिसल से जायद होना लाजिम नहीं है कि जबरदस्ती खामन को कहा जाए कि नहीं इससे निसफ से ज्यादा का देना पड़ेगा, नहीं नहीं, ज्यादा जितना वो देना चाहे वो खावन की मर्जी है भाई, लेकिन बहरहाल लाजिम नहीं है निसफ से जायद देना। भाई याद रखो, याद रखो, निकाह में महर जरूर आता है, आप जिक्र कर दें तो अच्छी बात है, अगर जिक्र नहीं करेंगे तो महरे मिसल आ जाएगा, और याद रखो जब किसी औरत से निकाह किया जाता है तो असल यह है कि महरे मिसल आना चाहिए, यानी इस जैसी औरतों का जो महर होता है वही महर आना चाहिए, लेकिन जब मुसम्मा आ गया यानी जिसको जिक्र कर दिया, जो मुकर्रर कर दिया, ये जो मुसम्मा होता है ये महरे मिसल से कवी होता है, आना तो महरे मिसल चाहिए था, जब भी औरत से निकाह करें क्या आना चाहिए, महरे मिसल आना चाहिए उस जैसी औरतों का जो महर होता है, लेकिन जब मुसम्मा आ जाता है वो इस महरे मिसल को एक तरफ कर देता है तो मुसम्मा वहां आ जाता है, महरे मिसल नहीं आता। मालूम हुआ मुसम्मा क्या है, जो मुकर्ररा है वो महरे मिसल से ज्यादा कवी है, तो जब मुसम्मा के अंदर सोहबत से पहले तलाक दो तो कितना आता है, निसफ, जब मुसम्मा महर के अंदर औरत को सोहबत से पहले तलाक दो तो मुसम्मा का निसफ आता है, तो जब कवी के अंदर निसफ से जायद देने का हुकाम नहीं है तो महरे मिसल जहां पर आता है वहां पर भी महरे मिसल के निसफ से जायद देने का हुकाम नहीं होगा। बात समझ में आ गई। और महर कम से कम कितना होता है, 10 दिरहम, और 10 दिरहम का निसफ कितना है, 5 दिरहम, तो लिहाजा 5 दिरहम से भी कम नहीं होना चाहिए किसी हाल में मुता को। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं सुम्मा ही ला तुजादु अला निस्फ महरे मिसलिहा, फिर इस मुता को बढ़ाया नहीं जाएगा निस्फ महरे मिसल पर, यानी बढ़ाना लाजिम नहीं है, खावन बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है। वला तुन कसुआन खमसती दराहिमा, और 5 दिरहम से कम भी नहीं किया जा सकता। वयुअरफु ज़ालिका फिल असली, और ये बात मालूम होती है असल यानी मबसूत से। असल से क्या मुराद है, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की किताब मबसूत, कहते हैं मबसूत से यह बात मालूम होती है कि निस्व महरे मिसल से जायद होना लाजमी नहीं और 5 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए मुता को। भाई बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस, बिहादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।